ओम शांति। मुस्कुराकर कहिए ओम शांति। आज के इनॉग्रल सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जो भी भाई बहन पीछे बैठे हैं, मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगी कि वो सामने आ जाएं। सभी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी और मैं सभी से अनुरोध करना चाहूंगी कि जो भी पीछे बैठे हैं, ये भी हमारा परमात्मा के लिए और अतिथियों के लिए सम्मान होता है। तो अनुरोध है कि आप सभी सामने आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। तो सर्वप्रथम हम हमारी जो चीफ हैं, आदरणीय राजयोगिनी बीके मोहिनी दीदी जी, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ब्रह्मा कुमारीज, तो सबसे पहले हम उनका आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग प्राप्त करेंगे, क्योंकि वाकई में सम्मान आशीर्वाद हमारे जीवन की एक ऐसी ऊंचाई होती है कि आशीर्वाद की गहराई में जाकर हम भी आध्यात्म की उस गहराई पर पहुंच जाते हैं, जहां कोई ऐसा शिखर तो नहीं जहां नाम मान शान प्राप्त हो, लेकिन आध्यात्मिकता स्वतः ही हमें वो ऊंचाई देती है। तो चलिए सर्वप्रथम हमारी चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा हम ब्लेसिंग प्राप्त करते हैं वीडियो मैसेजेस के द्वारा।
ओम शांति। सभी को स्वयं का परिचय, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं और आप भी शांत स्वरूप हैं, ऐसा मन में सोचते हुए हमको ओम शांति कहना है सभी को। तो सभी कहिए ओम शांति। हमारा सोचना, हमारा बोलना, दोनों का वातावरण में प्रभाव होता है। तो सिर्फ मन में ये सोच लें कि मैं शांत स्वरूप हूं, सभी शांत स्वरूप हैं और वर्तमान समय हमें विश्व में शांति की आवश्यकता है। तो ये जो सोचेंगे और फिर हम बोलते हैं, इसकी जो वाइब्रेशंस हैं वो सभी तक पहुंचती हैं और पहुंचनी चाहिए। वर्तमान समय और ऐसे भी मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। हर प्रकार के मीडिया, चाहे वो न्यूज़पेपर है, चाहे वो टेलीविजन है, चाहे कोई मैगजीन है। मुझे याद है कि पिछली बार मैं मीडिया के इस सेशन में थी तो बहुत सारे मीडिया पर्सनल छोटी छोटी किताबें, छोटी छोटी मैगजीन, लोकल कम्युनिटी न्यूज़पेपर, इस तरह के भी प्रतिनिधि थे, सब तरफ के प्रतिनिधि थे। तो कहने का भाव ये कि सिर्फ मीडिया में हम मेन टेलीविजन या बड़ी बड़ी जो अखबारें हैं उनके बारे में नहीं सोच रहे, पर हर एक प्रकार का, जिसके पास भी कलम है, जिसके भी वाणी में बल है, जिसके अंदर भी ऊंच विचार है, तो सभी, जैसे कि जो भी माध्यम है, जो भी जहां भी आपका मीडिया में कनेक्शन है, वर्तमान समय शांति का संदेश देना बहुत जरूरी है। संघर्ष नहीं, समझौता, और समझौता करने के लिए अपने अहंकार को, अपने लोभ को संयम में रखना बहुत जरूरी है। मैं सभी मीडिया वालों से ये आराधना करती हूं कि सभी ये लक्ष्य रखो कि हम जो भी संदेश देंगे, जिस भी बात का हम चाहें एक्सप्रेस करना, सब में शांति की भावना हो, शांति का संदेश हो, क्योंकि ये तो चलो वर्तमान समय जो युद्ध चल रहे हैं, लेकिन ऐसे भी चाहे समाज में चाहे परिवार में कहीं भी किसी भी प्रकार का संघर्ष है वो समाप्त हो, मनुष्य के जीवन में परिवार में समाज देश और विश्व में शांति हो, क्योंकि प्रगति जीवन में तभी होती है जब शांति है। आप भी खुद देखेंगे आपका मन जब शांत होता है तो कितना स्पष्ट होता है, निर्णय शक्ति कितनी अच्छी होती है, मन बुद्धि के अंदर कितनी बहुत रचनात्मक और श्रेष्ठ संकल्प आते हैं। शांत स्वभाव होता है तो दूसरों को भी उसका अनुभव होता है। बहुत बड़ा गुण है शांति। एक तो विश्व शांति है पर व्यक्तिगत रूप में भी शांत चित्त, शांत मन, शांत स्वभाव, ऐसा होना बहुत जरूरी है। आप सभी यहाँ पर आए हैं, चारों तरफ शांति का वातावरण है, सभी का सोच बहुत श्रेष्ठ है, पॉजिटिव है। इस वातावरण में आप कुछ दिन के लिए हैं तो आप व्यक्तिगत रूप से भी लाभ लीजिए और अपना जो हमारा कार्य है, हमारी इस समय हमें करना है जो कुछ, उसमें भी शांति का ही संदेश रहे, ऐसा लक्ष्य लेकर के आप यहाँ से जाएंगे तो न केवल आपका व्यक्तिगत बहुत बहुत ऊंचा सम्मान बढ़ेगा, मान बढ़ेगा, परंतु आप एक सेवा विश्व की वो करने के भी निमित्त बनेंगे। मेरी आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप एक इंस्ट्रूमेंट हैं और ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनिए जिससे विश्व में शांति का संदेश, शांति व्यापक हो जाए। ओम शांति।
बहुत बहुत दिल से शुक्रिया दीदी जी आपका कि आपके ओम शांति में ही अपने आप में एक शांति समेटी हुई थी। और अब मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ सभी मंचासीन अतिथियों को। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी भ्राता मान सिंह परमार जी को, सरला बहन जी, भ्राता सुभाष बराला जी को, आदरणीय शीलू दीदी जी, भ्राता मनीष वाजपेयी जी, भ्राता नरेश कौशल जी, आदरणीय राजयोगिनी सुदेश दीदी जी, तनिया पटनायक बहन को जो गेस्ट ऑफ ऑनर है, और साथ साथ राजयोगी भ्राता करुणा भाई जी को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। सभी माननीय सम्मान्य अतिथिगण मंच पर विराजित हूँ। आपका ब्रह्म कुमारी परिवार की ओर से तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है, जोरदार तालियों के द्वारा, क्योंकि आज का ये सम्मेलन केवल एक आयोजन ही नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक जागरण है, जहां मीडिया जैसे शक्तिशाली माध्यम के जरिए हम विश्व शांति का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और जब सोच में पवित्रता और शब्दों में प्रकाश होता है तभी इस संसार का सच्चा विकास होता है। तो अभी मैं विशेष हमारी बहनों से भी अनुरोध करूंगी, लेकिन कोई भी कार्यक्रम की शुरुआत हम परमात्म याद से करते हैं तो दो मिनट परमात्म स्मृति के पश्चात परमात्मा का आवाहन करके आज के इनॉग्रल सेशन का हम शुभारंभ करने जा रहे हैं।
अशांति का अंधेरा जा रहा शांति का स्वर्णिम सवेरा आ रहा देखिए शिव ज्ञान सूरज वो उदय देखिए शिव ज्ञान सूरज वो उदय शांति की किरणें है वो बिखरा रहा शांति का स्वर्णिम सवेरा आ रहा संसार शिव है आ रहा
परमात्म स्मृति एक ऐसा अनुभव है क्योंकि जो खुद को प्रभु में लीन कर देता है वही दूसरों के जीवन को प्रकाश से भर देता है। सम्माननीय मंच, हमने हृदय के शब्दों की गहराई से आपका दिल से ब्रह्मा कुमारी परिवार की ओर से स्वागत किया, लेकिन पुष्पों के बिना, पुष्पों की सुगंध के बिना सब कुछ अधूरा सा लगता है, क्योंकि पुष्प में रंग, रूप और खुशबू तीनों ही होते हैं। तो मैं बहनों से अनुरोध करना चाहूंगी कि आप बुके और अंगवस्त्र पहनाकर मंचासीन अतिथियों का दिल की गहराइयों से अभिनंदन करेंगे। आपकी तालियों का सपोर्ट हमें चाहिए रहेगा क्योंकि ये मंच स्व परिवर्तन का संदेश दे रहा है और मानसिकता, सोच और संस्कार को गढ़ने की शक्ति बन रहा है ये मंच। और यदि मीडिया सकारात्मकता, सत्य और शांति का वाहक बने तो ये पूरी दुनिया में एक नया युग ला सकता है, क्योंकि स्वागत हो रहा है सभी का। कलम जब सच्चाई से मिलती है तो इतिहास बनती है, और जब आत्मा से जुड़ती है तो दुनिया बदल जाती है। मंचासीन अतिथि, रूप रंग और खुशबू तीनों को बिखेर रहे हैं और हमारे सम्मुख अब जो चिंतन उभरेगा वाकई में वो एक गहरी सोच को लेकर के उभरेगा। और पुष्पगुच्छ अंग वस्त्र ये एक सम्मान है और ब्रह्म कुमारी इस परिवार में हमारे प्रथम लीडर ब्रह्मा बाबा और हमारी दादियों ने ये सम्मान हमें सिखाया है, क्योंकि कहा भी जाता है गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। और हमारी आदरणीय सुदेश दीदी जी भी मंच पर विराजित हो चुके हैं, आप जोरदार तालियों के द्वारा इनका भी अभिनंदन कीजिए। आप ब्रह्मा कुमारी के संयुक्त मुख्य प्रशासिका और ज्ञान सरोवर एकेडमी के भी आप डायरेक्टर हैं। अंग वस्त्र पहनाए जा रहे हैं क्योंकि भाग दौड़ में खोया इंसान जब खुद को पहचान लेता है तो एक पल का ध्यान ही जीवन को महान बना देता है। और ये मंच कोई साधारण मंच नहीं है, ये ध्यान की गहराई को अनुभव कराने वाला मंच है। और अभी जिनकी सरलता को हम अनुभव करेंगे, आदरणीय सरला दीदी जी को भी विशेष हमारी बहने बैच पहना रही हैं और उनका भी दिल की गहराइयों से अभिनंदन कर रही हैं, क्योंकि संस्कारों की गहराई जब मंच पर आती है तो संस्कृति मुस्कुराकर ताली बजाती है। इस बात को और गहराई से अनुभव कीजिए कि संस्कारों की झलक जब मंच पर आती है तो संस्कृति भी मुस्कुराकर ताली बजाती है। तो एक बार पुनः जोरदार तालियों के साथ मंचासीन अतिथियों का अभिनंदन स्वागत। पुष्प गुच्छ के द्वारा, सुगंध के द्वारा स्वागत तो हुआ, लेकिन गीतों के बिना भी सब कुछ अधूरा सा है। तो मैं आमंत्रित करती हूँ मधुर वाणी ग्रुप को वेलकम सॉन्ग के लिए। वाकई में इनकी मधुर वाणी आपके अंदर एक उमंग, उत्साह और जोश से आपको भर देगी। सतीश भाई, नितिन भाई और हमारे गोविंद भाई मधुर वाणी ग्रुप से जो वेलकम सॉन्ग के द्वारा मंच का और साथ साथ आप सभी दिव्य आत्मिक विभूतियों का गीतों के माध्यम से स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं।
एक बार सभी सस्वर कहें संवेद स्वरों में, ओम शांति। शांति के संसार में सादर है स्वागत। आइए हे मीडिया के मनीषी, आकर प्रभु प्यार पाइए। अध्यात्म का ये संसार आपको सादर आमंत्रित करता है, प्रभु प्यार निमंत्रित करता है। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप अपना अभिनंदन स्वीकार करें।
आज वैश्विक शांति की है बड़ी आवश्यकता, सोच विचारे ऐसे में क्या मीडिया की भूमिका। आपका आह्वान करता हो, आपका आह्वान करता, ध्यात्म का संसार है मीडिया। दुनिया के मनुष्यों सादर स्वागत सत्कार है। मीडिया के मनुष्यों सादर स्वागत सत्कार है। परिवर्तन का पन्ना नहीं बस दर्पण है। विश्व में शांति लाने को सेवा में होना अर्पण है। कुछ पलों की और कुछ को शांति नहीं अब चाहिए। मन की शांति सच्ची शांति विश्व में शांति चाहिए। शांति ही सुखमय समाज का हो, शांति ही सुखमय समाज का एकमेव आधार है। मीडिया के मनुष्यों सादर स्वागत सत्कार है। मीडिया के मनुष्यों सादर स्वागत सत्कार है।
बहुत खुशी के पल है।
माइक
मीडिया के महाशयों ने अब तो मन में ठाना है। मीडिया अध्यात्म का फिर मंगल मिलन कराना है। ओ शांति एकता और विश्वास समाज में बढ़ाना है। मूल्यों के संवर्धन से भारत को स्वर्ग बनाना है। आध्यात्मिकता राजयोग से हो, आध्यात्मिकता राजयोग से रचना विश्व इतिहास है। मीडिया के मनुष्यों सादर स्वागत सत्कार है। मीडिया के मनुष्यों सादर स्वागत सत्कार है। शांति का संसार रचाने आया है। अरावली पर शांति का उसने महायज्ञ रचाया है। ओ आइए युग संजय आकर दिव्य दृष्टि ले जाइए। परिवर्तन प्रभु योजना का सबको दृश्य दिखाइए। प्रसन्न होकर प्रभु करते हो, प्रसन्न होकर प्रभु करते प्रेम पुष्प बरसात है। मीडिया के मनुष्यों सादर स्वागत सत्कार है। मीडिया के मनुष्यों सादर स्वागत सत्कार है। आपका आह्वान करता हो, आपका आह्वान करता अध्यात्म का संसार है। मीडिया के मनुष्यों सादर स्वागत सत्कार 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 है।
बहुत ही सुंदर मधुर वाणी ग्रुप ने वाकई में हमें अंदर की शांति से और साथ साथ उमंग उत्साह से भी भर दिया। संगीत के साथ नृत्य भी, और नृत्य में सुर भी, लय भी, ताल भी, और जब ताल से ताल मिलती है संगीत के साथ तो और भी हृदय उमंग उत्साह से भर जाता है। तो अभी बिलासपुर से आई डायमंड ग्रुप की एक छोटी सी बालिका कुमारी त्रिशा नायडू नृत्य लेकर के आ रही हैं। चहक उठी हैं वादियां, आप यहां पर पहुंचे हैं तो क्यों न इनका भोलापन बालपन भी आपके स्वागत में आतुर हो। इन पहाड़ों के बीच में और साथ साथ पुष्पों की सुगंध के बीच में लीजिए, प्रस्तुत है कुमारी त्रिशा नायडू के द्वारा बहुत ही सुंदर नृत्य चहक उठी है वादियां। सुंदर कुमारी त्रिशा नायडू के द्वारा अतिथियों का और आप सभी हमारे स्नेही भाई बहनों का नृत्य के द्वारा अभिनंदन हुआ। अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी आदरणीय सिस्टर बीके सरला दीदी जी को जो वाइस चेयरपर्सन है मीडिया विंग की, आप हैदराबाद से पधारी हैं और साथ साथ आपने बहुत सारी सिद्धियां भी प्राप्त की, अर्थात पत्रकारिता में मूल्य आधारित पत्रकारिता और शांति नैतिकता को आपने बढ़ावा दिया। तो आपके लिए यही कहना चाहूंगी सरला दीदी कि अगर इरादे अगर सेवा के हों तो राहें आसान हो जाती हैं, और जब लक्ष्य मानवता का हो तो मंजिल पास आ ही जाती है, तो मंजिल पास आ ही जाती है। आदरणीय सरला दीदी जी,
ओम शांति। सर्वप्रथम भगवान शिव परमात्मा को और उनके साकार मीडिया माध्यम पिताश्री ब्रह्मा जी को इस मंच पर उपस्थित होने के लिए रिक्वेस्ट करती हूँ। रेस्पेक्टेड मंच, डिग्निटरीज ऑन द डाइस, मोस्ट रेस्पेक्टेड सुदेश दीदी जी, टुडेज चीफ गेस्ट सुभाष बराला जी, चीफ ऑफ मीडिया विंग करुणा भाई साहब, राजयोगिनी शीलू दीदी जी और माननीय अतिथिगण परमार जी, तनाया पटनायक जी, मनीष जी एंड वीर संचालिका हमारे प्यारी बहन मंजू जी, और नेशन से हर एक स्थान से पत्थारे आप सब बहुत बहुत प्यारे भगवान के अति प्रिय सिस्टर्स and brothers. This media conference, Need for Global Peace, the role of media, इस टॉपिक के ऊपर हम इसलिए चुने हैं, ग्लोबल लेवल में परिस्थिति क्या हो रही है इसको ध्यान में रखते हुए एक थीम लेके माननीय प्रोफेशनल रीति से एमिनेंट पर्सनैलिटीज को इस कॉन्फ्रेंस में बुला के हम सब लाभ लेने के लिए, दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव। इसमें डिफरेंट सेशंस में मीडिया के रोल को इतना क्लैरिटी देने के लिए हम बहुत प्रयास किया है। इसमें हमारा प्रयास यही रही कि प्रोफेशनल रीति से अब बहुत एम्पावर हो सके, आपकी स्किल बहुत डेवलप हो सके और आपकी जो इंटरनल जो सेल्फ है उसको यहाँ एनलाइटन हो सके। और जब भी आप यहाँ से जाते हो बहुत बहुत प्रोफेशनल रीति से सेल्फ के रीति से आप बहुत बहुत लाभ लेके जाने के लिए हमारा ऑब्जेक्टिव बना रखा है। आप जानते हैं भगवान की ऑब्जेक्टिव तो बहुत आप जानते हैं होती है, भगवान तो हमारा पिता है तो भगवान की ऑब्जेक्टिव ये होगा ना, होती है कि उनके जो हम बच्चे सब सुखी रहे, शांत में रहे, आनंद के जीवन जिए। ये तीन भगवान बहुत हमारे लिए सोचते हैं, उनकी शुभ भावना ऐसी रखते हैं। और हर एक इस दुनिया में जो जीते हैं तो उनकी भी ऑब्जेक्टिव यही रखते हैं कि हर एक की भावना इसी ऊपर चलते हैं कि हम सुख रहे, शांति रहे, शांति में जिए, यही रखते हैं। तो हम मीडिया के ऑब्जेक्टिव ये रखे कि भगवान की ऑब्जेक्टिव और दुनिया वालों के जो चाहना है उसको मिलाते हुए हमारी ऑब्जेक्टिव है भगवान की जो सोच है उसको, माना जो सॉल्यूशंस भगवान से मिलता है वो सॉल्यूशन प्रॉब्लमेटिक जो अभी दुनिया है उसको देवे, हम उसी लक्ष्य से उसी ऑब्जेक्टिव से हमारे जो प्रोफेशन को अपनाए, तो मैं सोचती हूँ ये मीडिया का लक्ष्य हम रखे चलते हैं। तो वैसे तो मीडिया वाले थोड़ा मजबूरी से जो दुनिया में होने जा रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज से शॉकिंग न्यूज कहो ऐसे देना ही पड़ता है, मगर आपकी सोच इन ब्रह्मा कुमारीज इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच टीचेस यू ऑन हाउ टू थिंक द बेस्ट वे अबाउट योर सेल्फ एंड अबाउट अदर्स। आप शुभ भावना के आप गिफ्ट यहाँ से लेके जाते हो, शुभ कामना दूसरों के ऊपर रखना वो आप गिफ्ट के रूप में लेके जाते हो। तो इस अगर मजबूरी से आप कुछ लेखन लिखो या शीर्षक लिखो तो उसमें आप जैसे एक डॉक्टर होते हैं पेशेंट को सर्जरी करते हुए वो ऐसे नहीं सोचती उनको दर्द देने का दुख देने का, उनको सुख देने का प्रयास से वो सर्जरी करते हैं, ऐसे हम मीडिया वाले इस रीति से डिटैच्ड हो करके उस कर्म उस कार्य को आप निभावे तो हम वी आर लिविंग इन कर्म क्षेत्र। जो भी हम कर्म करते हैं वो कर्म का हम भोगना ही पड़ता है। अगर एक पुलिस दोषी को मैं उनको दुख देना करके उनको उनमें परिवर्तन लाना करके वो समा उनको मना पनिश करते हैं, वैसे ही हम मीडिया वाले हम जो करते हैं डिटैच्ड हो करके आपके प्रोफेशनल रीति से आप करें, और जो बीच में भगवान बैठा है आपका सोच श्रेष्ठ है तो आपका कर्म श्रेष्ठ होगा और भगवान आपको साथ देंगे और आपको इतना लाभ देंगे आपके जीवन को सुनहरा जीवन बना देंगे। यही है हमारी ऑब्जेक्टिव एंड भगवान की ऑब्जेक्टिव और लोगों के ऑब्जेक्टिव को आप अंडरस्टैंड करते हुए यहाँ वो अंडरस्टैंडिंग के लिए वो समझ आप में लाने के लिए ये हमने ये कॉन्फ्रेंस रखा है। तो आप इसमें इन 2 दिन और बाकी है, इन 2 दिन में आप पूरी रीति से जो यहाँ के सेशंस हो रही है उसमें आप लाभ लीजिए, और हमारा यही इच्छा है कि आपकी फैमिली में हर एक सदस्य सुखी रहे शांत में रहे जीवन आनंद से बीते और भगवान की जो वर्षा है भगवान की वर्षा है ये 3 पूर्ण रीति से आपके जीवन में मिले, यही इच्छा से इस बहन की भावना से आपको फिर से धन्यवाद अभिनंदन और अभिवादन। ओम शांति।
बहुत बहुत दिल से शुक्रिया सरला बहन जी का, जिन्होंने बहुत ही सरल शब्दों में हमारे जीवन के अंदर एक उत्साह लाया कि किस प्रकार मीडिया बंधुओं को अपने जीवन को सशक्त बनाना है। अब मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ वरिष्ठ शिक्षाविद कुशल प्रशासक एवं मीडिया गुरु भ्राता प्रोफेसर डॉक्टर मानसिंह परवास जी को। आप पूर्व कुलपति कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय रायपुर, साथ साथ अगर मैं आपका परिचय देने लग जाऊं, लेकिन कई बार ऐसा महसूस होता है कि व्यक्तित्व परिचय का मोहताज नहीं होता, और आपका व्यक्तित्व ही ऐसा है। तो आपके लिए यही प्यार भरे शब्द हैं कि विचारों की शक्ति जब शब्द बन जाती है, विचारों की शक्ति जब शब्द बन जाती है तो समाज में एक नई दिशा दिखाती है। और प्रोफेसर डॉक्टर मान सिंह परमार जी इसी व्यक्तित्व के धनी हैं। आपके निर्देशन में लगभग 28 शोधार्थियों ने पीएचडी की भी उपलब्धि हासिल की है और मैंने आपको बहुत ही निकटता के साथ अनुभव भी किया है। तो मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ भ्राता मान सिंह परमार जी को, मुस्कुराहट के साथ और जोरदार तालियों के साथ आपका अभिनंदन है परमार जी। और आपने शब्दों के माध्यम से आप सभी के अंदर उमंग उत्साह भर देंगे, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है।
वैश्विक शांति की आवश्यकता और मीडिया की भूमिका विषय पर आयोजित इस मीडिया महासम्मेलन के मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण, माननीय अतिथिगण और देश भर से आए पत्रकार बंधुओं, यूं कहें मीडिया कर्मियों, मीडिया शिक्षक, विज्ञापन के क्षेत्र के लोग होंगे, कॉरपोरेट कम्युनिकेशन फील्ड के लोग होंगे, आप सबका यहाँ आबू राज में स्वागत है। और इस दो दिन तीन दिन के विचार मंथन और इस यज्ञ में आहुति देकर के फिर जब आप अपने काम पर लौटें तो कुछ नया संकल्प लेकर के लौटें कि हम हमारा योगदान शांति की स्थापना में क्या हो सकता है। क्योंकि आज पूरे विश्व में अशांति छाई हुई है। आज का परिदृश्य हम देखें तो बहुत सारे देश आपस में लड़ रहे हैं, परमाणु संपन्न बनने की होड़ लगी हुई है, एक दूसरे के ऊपर मिसाइल बम गिराने की भी होड़ लगी हुई है और मानवता कहीं न कहीं, मानवता का पक्ष कहीं न कहीं छूटा जा रहा है। आप देखिए अमेरिका, इजराइल मिलकर ईरान से लड़ रहे हैं, रूस यूक्रेन पर लड़ रहा है, हमास, हिजबुल्ला, ऐसे बहुत सारी बातें हमने रोज हमारे जो मीडिया के साथी हैं उनके मुख पृष्ठ, प्रथम पृष्ठ की जो हेडलाइन होती है वो वही होती है, हिंसा हिंसा और अशांति। ऐसे समय में यहां इकट्ठा होकर हम चर्चा कर रहे हैं तो मैं अपनी बात की शुरुआत, मित्रों आज थोड़ा कुछ बाबा की याद से शुरू करता हूं। आप सब लोगों ने, अब मीडिया के लोग हैं जो बीके भाई बहन है वो तो सारे समझते हैं, मुरली शब्द का को सुना होगा सबने। एक तो मुरली बनाई बजाई थी भगवान श्री कृष्ण ने, उनकी स्वर लहरियों ने, उसकी आवाज ने पूरे विश्व में शांति का संदेश दिया था। और आज इस क्या कहें संगम युग में बाबा की मुरली ने पूरे विश्व में शांति का संदेश फैलाया है और इस अशांत युग में, अशांत समय में एक नई ऊर्जा, नई स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, विश्व कल्याण का संदेश दिया है। तो भगवान शिव ब्रह्मा बाबा के मुखारविंद से, मुरली के माध्यम से संचार, संप्रेषण, संवाद करते हैं। मुरली का अर्थ है बाबा के मुख से निकली वाणी। मुरली आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। उपनिषद में लिखा है पुरुषस्य वाग्रसा वाच ऋग्रसा, अर्थात व्यक्ति का सार या आत्मा वाणी है, वाणी के बिना सब कुछ भी नहीं है, संसार वाणी से है। इसी मुरली अर्थात ईश्वर की वाणी से विश्व कल्याण, विश्व परिवर्तन, विश्व शांति का संदेश पूरे जगत को मिल रहा है। बाबा ने मुरली के माध्यम से जो संवाद, जो संप्रेषण किया, उसे आध्यात्मिकता के साथ साथ मनुष्य के दिव्य गुणों को बताया है। ये दिव्य गुण वो हैं जो आज तक प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया हिंदुस्तान में एक आचार संहिता नहीं बना पाई है, आदर्श आचार संहिता का निर्माण नहीं हुआ है। मेरा ये मानना है कि ये दिव्य गुण अगर हमारे पत्रकार बंधु अपनाएं तो आदर्श आचार संहिता की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। बाबा ने मानव को नैतिक और चारित्रिक मूल्यों का ज्ञान दिया। नैतिकता का आधार पवित्रता, ईमानदारी और सत्यता, ये तीन चीजें जो है, पवित्रता, ईमानदारी और सत्यता, ये सभी लोगों पर समान रूप से लागू होती है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हों, चाहे वो अन्य पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हों या अन्य क्षेत्रों में काम करते हों। ये सामान्य नैतिक मूल्य हैं जो सब पर लागू होते हैं। शुभ भावना और शुभ कामना के माध्यम से शांति का संदेश फैलाना है। हम तीन बार बोलते हैं यहां, शांति शांति शांति, शुभ 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 में सारे दर्शनों की, सारी नैतिकता का सार समाया हुआ है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 19(2) में और हमारे संविधान के प्रस्तावना में दोनों में शांति की बात कही गई है। अनुच्छेद 2 में कहा गया है फ्रेंडली रिलेशंस विथ फॉरेन स्टेट्स। आजकल क्या हो रहा है, फ्रेंडली रिलेशंस खत्म हो रहे हैं, एक दूसरे को मारने पर तुले हुए हैं, सर्वनाश करने पर तुले हुए हैं। तो संविधान, जब हमारे संविधान निर्माता बना रहे थे तो उन्होंने हमारे जो उसका प्रियम्बल है उसमें बंधुता शब्द का प्रयोग किया है। बंधुता में शांति आती, बंधुता में विद्वेष नहीं आता है। तो हमारे संविधान में कई जगह हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी है, मैं बहुत जगह बहुत बहुत साफ शब्दों में बहुत बोलता हूं क्योंकि मैं कुल गुरु रहा हूं और कुल गुरु का काम यह है कि चाहे राजनीतिक क्षेत्र के लोग हों, चाहे पत्रकारिता का गुरु रहा हूं, इसलिए मैं सब बातें बताता हूं कि भाई ये सही है, ये गलत है। वास्तव में देखा जाए तो संविधान का अध्ययन सबको करना चाहिए, बहुत जरूरी है। अब मुख्य मुद्दा है कि मीडिया की क्या भूमिका होनी चाहिए, ये बहुत जो आज का विषय है वो यही है। देखिए, आजादी के पहले क्रांति का एक माहौल था, सामने एक आदर्श था, एक उद्देश्य था, एक लक्ष्य था, एक एम था, ऑब्जेक्टिव्स थे कि हमें आजादी पाना है। तो मीडिया ने और मीडिया के साथ साथ हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रयास से आजादी प्राप्त की। फिर स्वतंत्रता प्राप्त हो गई तो आजादी के बाद विकास की धारा बहना चाहिए भारत में, इसमें मीडिया ने बहुत सहयोग दिया। अब विकास भी मेरे ख्याल से काफी हो गया है, चल रहा है, अब क्या करें मीडिया, ये सबसे बड़ा सवाल है। दो तीन बातें हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया। प्रिंट मीडिया अपनी जगह बहुत सही दिशा में मेरे ख्याल से चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लाइव और ब्रेकिंग के फेर में पड़ गया है, पूरे समय इस तरह की बातें आती हैं। इसलिए यहां शांति की बात करना बहुत आवश्यक है, बहुत इस विषय पर गंभीरता से सोचना जरूरी है कि दिन भर आप ईरान में जो बच्चियां स्कूल में पढ़ने गई थी उनके ऊपर मिसाइल गिरा दी गई। हाँ, एक बार समाचार दे दिया, दो बार दे दिया, रोज रोज उन कब्रों को, उन बच्चियों को दिखाना कितना कितना दुखदायी लगता है, देना चाहिए। देखिए, मीडिया का काम है ट्रुथ को, सत्यता को लोगों के सामने रखना, पर ऐसा ट्रुथ भी नहीं रखना जो लोगों में बहुत ज्यादा दुख पहुंचाए, क्योंकि हमारे यहां गीता में भी लिखा है, कबीर ने भी कहा है और शिव बाबा ने भी कहा है कि ऐसी वाणी मत बोलिए जो दूसरे को तकलीफ दे। और मीडिया में तो वो ताकत है जिसे अकबर इलाहाबादी ने बहुत पहले कहा था, खींचो न कमा नोखो न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। अभी वर्तमान में तोपें ही चल रही हैं, पूरे विश्व में हाहाकार मचा हुआ है। एक देश का राष्ट्रपति दूसरे देश के राष्ट्रपति को उसके घर में से पकड़ करके उसको हाथ में हथकड़ियां डाल करके अपने देश में ले जाता है। ये कौन सी संप्रभुता है, कैसे आप इस तरह से कर सकते हैं, मानवता के खिलाफ है ये। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं अमेरिका के राष्ट्रपति को या और जो लोग हैं उनको हमारा जो यहां 7 दिन का कोर्स है वो करवाना बहुत जरूरी है। उसके माध्यम से उन्हें सद्बुद्धि मिलेगी और जो पत्रकारिता का धर्म है, पत्रकारिता का कर्म है, क्योंकि पत्रकारिता केवल सूचना देने का काम नहीं करता। सूचना देना तो सब लोग आजकल सोशल मीडिया खूब सूचना दे रहा है और फेक न्यूज का अंबार है, मिस इन्फॉर्मेशन का अंबार है, परंतु सोशल मीडिया का एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष भी है कि उसने लोगों को आवाज दी है। हर व्यक्ति पत्रकार बन गया है, हर आदमी सूचना का प्रेषण करता है, ये बहुत जरूरी भी है। सोशल मीडिया चाहे तो देश में शांति स्थापना में या शांति की ओर ले जाने में सोशल मीडिया बहुत अहम भूमिका निभा सकता है। पर देखिए, सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक पहलू ऐसा है जो श्वेत पक्ष है और दूसरा ऐसा पहलू है जो कृष्ण पक्ष है। तो सोशल मीडिया भी बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु ये बात जरूरी है कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसको अभी बहुत कुछ करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है इस शांति स्थापना में अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा तो हम लोगों में अच्छे गुण, अच्छे बातें, अच्छी बातें लाएंगे। क्योंकि क्या है, देखिए आप, पूरे विश्व में सब कुछ चल रहा है, भारत में भी चल रहा है। कई लोगों ने कहा कि भारत के शासन प्रशासन, यहाँ की राजनीति, या यूं कहिए यहाँ के जो टॉप लीडर्स हैं, वो कुछ बोल रहे नहीं लड़ाई वही के बारे में, क्या बात है, चुपचाप क्यों हैं। वास्तव में हमारी नीति इस मामले में सही है, परंतु हमें विश्व शांति स्थापना के लिए विश्व गुरु तो बनना होगा, और विश्व गुरु ज्ञान के बिना नहीं बन सकता। और वो ज्ञान यहां आबूराज में ईश्वरीय ज्ञान, राजयोग, ईश्वरीय सेवा के माध्यम से बहुत कुछ किया जा सकता है। क्यों ना हम इस 140 देशों में विस्तारित है ये काम, परंतु अभी बहुत बहुत जरूरत है कि घर घर तक पहुंचे, उन लोगों तक पहुंचे, क्योंकि जो मीडिया है वो कॉरपोरेट घरानों के बीच में उनके चक्र में फंसा हुआ है। संपादक चाहते हुए भी नहीं लिख सकता, रिपोर्टर चाहते हुए भी सही रिपोर्टिंग करेगा उसको रोक दिया जाएगा, भाई ये इससे हमारे बिजनेस रिलेशन है, इस खबर को रोक दो। तो कैसे इससे उभरा जाए, ये बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि मीडिया का काम, मीडिया का उद्देश्य सामाजिक सरोकार भी है। मीडिया लोगों में एक, मीडिया मतलब संवेदनशील होकर के अपनी बातों को अगर समाज में रखेगा तो निश्चित रूप से इस बात को हम आगे बढ़ाएंगे। पर दूसरा, अभी जो सोशल मीडिया की मैं बात कर रहा था, वहां पूरी आजादी है, पूरी आजादी, आप जो चाहे लिख सकते हैं, जिस नेता के खिलाफ चाहे लिख सकते हैं। तो सोशल मीडिया इसमें बहुत अहम भूमिका निभाए, और प्रिंट मीडिया तो बहुत बहुत ही, मुझे लगता है, आजादी के पहले भी, आजादी के बाद भी, आज भी अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा है। क्योंकि जो खबर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दिन भर चला रहता है, रबड़ जैसा खींचता रहता है उसको, वो वास्तव में प्रिंट मीडिया एक कॉलम में समेट देता है उसको, क्योंकि उसकी इतनी इंपॉर्टेंस है एक कॉलम लाइव। पर हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे दिन भर दिखाते रहते कि 24 घंटे का मामला है, लाइव ब्रेकिंग का मामला है, विज्ञापन का मामला है, विज्ञापन के बिना मीडिया चल नहीं सकता एक कदम भी। तो हमारा जो जैसे शांति मीडिया है, देखिए आप, बिना विज्ञापन के चला रहे हैं हम लोग, पूरे विश्व में शांति का संदेश दे रहे हैं। तो मित्रों, विषय बहुत लंबा चौड़ा है, एक घंटे तक, क्योंकि शिक्षक होने के नाते एक घंटे का पीरियड से कम मैं लेता नहीं था, परंतु समय की मर्यादा भी है, और हमारे बहुत सारे वक्ता, हमारे राज्यसभा सांसद महोदय यहाँ पर हैं, ये उच्च सदन से हैं। देखिए, एक सदन है लोकसभा और एक है राज्यसभा। राज्यसभा में सब पढ़े लिखे लोग जाते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे लोग राज्यसभा में जाते हैं, एक्चुअल में यहाँ बराला साहब बैठे हुए हैं, मैं कहना चाहूंगा राजनीति के क्षेत्र में राजनीति का प्रशिक्षण, संविधान की जानकारी, ये शुरू में जब विधायक, पार्षद, सांसद बने तब उसके लिए शिक्षा में अनिवार्य करना चाहिए। मैंने बहुत सारे विधायक, बहुत सारे पार्षदों से बातचीत की, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी रखा था हमने इंदौर में। मैंने पूछा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं भाई, नीति निदेशक तत्व बताओ, सन्नाटा पूरे हाल में। अरे पूरा शासन, प्रशासन, शासन की जो नीतियां हैं, जो कल्याणकारी योजना है, वो सारी की सारी नीति निदेशक तत्वों में लिखी हुई है। अगर आपको नीति निदेशक तत्वों का अध्ययन नहीं है तो आप राजनीति कैसे करेंगे, आप लोगों के हित में कैसे काम करेंगे, ये बहुत जरूरी है। आप पूछ लीजिए कि संविधान के प्रियम्बल में क्या लिखा है, हम भारत के लोग से लेके आत्मार्पित करते हैं, वहां तक पढ़ के देखिए आप, एक एक शब्द मोती सा चुना हुआ है। तो मेरा यहाँ पर पत्रकारिता के क्षेत्र के लोग भी हैं, राजनीतिक क्षेत्र के लोग भी हैं, और हम शांति फैलाने वाले लोग भी हैं, तीनों उपस्थित हैं। मेरा आपसे यह है कि आप यहाँ से संकल्प लेके जाएं कि जिस क्षेत्र में जहाँ काम कर रहे हैं वहां संवेदनशील होकर सत्यता के आधार पर, तथ्यपरकता के आधार पर अपनी रिपोर्टिंग, अपना संपादकीय, अपना आलेख, अपने समाचार, अपने फोटोग्राफ्स, अपना जो भी वीडियो, रील, सोशल मीडिया, सब पर एक मर्यादा में काम करें, एक लक्ष्मण रेखा में काम करें, तो ये देश बहुत जल्दी विश्वगुरु बनेगा। और अंत में इस कार्यक्रम में करुणा जी भाई जी का आशीर्वाद रहता है, और भाई शांतनु भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। वो सारे मीडिया को, लोगों को जोड़ते हैं, जो भी फोन करता है उसको बराबर रिस्पांस देते हैं और उसके सारी चिंता करते हैं। तो ऐसे हम यहाँ आबूराज में आकर के बहुत ही अच्छा अनुभव करते हैं, शांति का माहौल रहता है, और इस माहौल में एक अच्छा संकल्प लेकर के हम अपने क्षेत्र में जाकर काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता मान सिंह परमार जी का। जैसे मान सिंह कहते ना तो मुझे कोई राजा की याद आ जाती है। वाकई में आप इस कलयुग में नैतिकता के एक सकारात्मक युद्ध में आगे बढ़ रहे हैं ऐसा प्रतीत हो रहा है, और साथ साथ आप दूसरों को भी मोटिवेट करते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दीप प्रज्वलन की ओर। कुछ दीप तो जला है हमारे भीतर आध्यात्म का, तो मैं सबसे पहले मंचासीन अतिथियों को कैंडल लाइटिंग के लिए और साथ साथ आमंत्रित करती हूँ बीके शांतनु भाई जो मंच पर आएंगे, बीके सुशांत भाई, बीके चंदा बहन, भ्राता निकुंज भाई, योगिनी बहन, पूनम बहन एवं मेडावली की आदरणीय सुनीता दीदी, सभी आप मंच पर उपस्थित हो और आप सभी जो ऑनरेबल स्पीकर्स हैं सभी सेशंस के, उनसे भी रिक्वेस्ट रहेगा कि आप नीचे है ना कैंडल लाइटिंग में साथ देंगे। और इस दीप की कड़ी में दीप से दीप जले, ऐसी हो आज की ये बेला, ज्ञान की ज्योति से रोशन हो हर एक इंसान, मीडिया बने जब शांति का सच्चा संदेश वाहक, तभी सजेगा विश्व में प्रेम और विश्वास का जहां। ये दीप केवल एक परंपरा नहीं बल्कि अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा का प्रतीक है। सभी स्पीकर जो सेशन में हैं वो भी सामने दीप प्रज्वलन में शामिल होंगे।
दीप जलाए अपने अपने मन में, शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में, जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं, परिवर्तन की है ये बेला, ये जग बदलने वाला, राजयोग का मार्ग यही है, सहज सरल निराला, दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर से इस तन में, जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाए,
दीप से दीप जल उठे हैं और आबुराज में इस ज्ञान सरोवर में हम सभी ज्ञान सरोवर में डुबके क्या, लेकिन आनंद के सागर में लहरा रहे हैं। और अब जिस घड़ी का इंतजार है हमारे मुख्य अतिथि को, मैं आमंत्रित करना चाहूंगी भ्राता सुभाष बराला जी को। और नेतृत्व वही है जो मूल्यों के साथ खड़ा रहे, नेतृत्व वही है जो मूल्यों के साथ खड़ा रहे और हर परिस्थिति में सच्चाई के साथ अड़ा रहे, ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं भ्राता सुभाष बराला जी। आप हरियाणा के एक प्रमुख राजनीतिक नेता हैं जो वर्तमान में राज्यसभा सांसद के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। वे हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, जहां उन्होंने संगठन को मजबूत करने, ध्यान दीजिएगा, संगठन को मजबूत करने और साथ ही जमीनी स्तर पर पार्टी के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और उनका राजनीतिक जीवन ग्रामीण और किसान समुदाय और इस पर मुद्दे उठाने, युवाओं को विशेष रूप से राजनीति से जोड़ने और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए समर्पित रहा है। सामाजिक क्षेत्र में भी भ्राता सुभाष बराला जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने शिक्षा, स्वच्छता, ग्रामीण विकास, सामाजिक समरसता के लिए पहल की है। और एक महत्वपूर्ण बात कि गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए सहायता की है, ये एक महत्वपूर्ण बात है। तथा आप सामाजिक जागरूकता लाने के लिए कई अभियानों से जुड़े रहे और सामाजिक और संगठनात्मक स्तर पर उन्हें दिल की गहराइयों से सम्मान एवं साथ ही प्रशंसा प्राप्त हुई है। और आपका समस्त जीवन भ्राता जी जन सेवा के लिए समर्पण को दर्शाता है। और मैं आपके लिए यही शब्द कहना चाहूंगी कि नेतृत्व वही है जो प्रेरणा बने, तालियां तो बजनी चाहिए, नेतृत्व वही जो प्रेरणा बने और साथ साथ जो समाज को सही दिशा दे। और अब मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ माननीय भ्राता सुभाष बराला जी को अपने प्रेरणादायक विचारों को साझा करने के लिए।
ओम शांति। वर्तमान परिदृश्य में जिस प्रकार का पूरी दुनिया का सिनेरियो हम देख रहे हैं, उसमें शांति और मीडिया बंधुओं की भूमिका, इस कार्यक्रम का आयोजन इस बहुत ही उच्च स्थिति प्राप्त संस्थान के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें मंच पर उपस्थित बहुत ही आदरणीय राजयोगिनी सुदेश दीदी जी, आदरणीय मानसिंह परमार जी जो अभी अपना उद्बोधन देकर के गए हैं, आदरणीय बहन सरला दीदी जी, आदरणीय भाई मनीष जी, आदरणीय नरेश कौशल जी, आदरणीय तान्या जी और बहुत ही आदरणीय करुणा जी मंच के सामने देश भर के कोने कोने से उपस्थित बहुत ही सम्मानित पत्रकार बंधुओं, आज इसको दुनिया की सबसे दिव्य भूमि कहना चाहूंगा माउंट आबू में। मैं परसों रात को आया था, वैसे तो एक बार पहले भी आना हुआ है, लेकिन अगर इसको गहनता के साथ देखने से ज्यादा अनुभव प्राप्त करने का अवसर पहली बार मुझे हुआ है। मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूं कि मुझे यहां आने का अवसर प्राप्त हुआ है। यहां आने के बाद मन बहुत ही शांत है, बुद्धि स्थिर है, चित्त में प्रसन्नता है और यहां का माहौल देख करके जिस प्रकार से आज के युग में अहंकार बहुत दिखाई देता है, तो यहां आने के बाद अहंकार लेश मात्र भी उसका कहीं कोई एहसास होता नहीं है। इस प्रकार का दिव्य परिसर यह है जहां मुझे आने का अवसर आपने दिया। मैं आप सबका, खास करके ब्रह्म कुमारी जी का, मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, आपको नमन करता हूं कि इतना बड़ा अवसर मुझ जैसे एक साधारण से सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता को आपने उपलब्ध करवाया। और ये संस्था, मैं समझता हूं कि दुनिया में अपने आप में एक बड़ी अनोखी संस्था है जिसका जन्म 1937 में पाकिस्तान में जरूर हुआ, क्योंकि दुख की बात है कि आज वो स्थान इस भारतवर्ष में नहीं है। जिस संस्थान की बुनियाद महिला सशक्तिकरण के रूप में रखी गई हो, जिस संस्थान का नेतृत्व महिलाओं के हाथ में हो, उससे बड़ा कोई, मैं समझता हूं आज के दिन में दुनिया में महिला सशक्तिकरण का कोई उदाहरण नहीं हो सकता। अगर हम संस्थान के विचारों की बात करें तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि यह एक शक्ति है जो विचारों के प्रबंधन से जीवन को संतुलित करने की कला सिखाती है। असंख्य साधक आज देश ही नहीं विदेश में भी जाकर के ब्रह्म बाबा के पावन संदेश को और प्रसारित करने का काम कर रहे हैं। बहुत सारी दीदियों से यहां मिलने को का जब मुझे अवसर मिला तो ध्यान में आया कोई 10 देशों के अंदर प्रवास करके आए हैं, कोई 50 देशों के अंदर, कोई 60 देशों के अंदर, और आज राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी मोहिनी दीदी जी का भी हमने यहां से लाइव जो सुना है वो भी आज ब्रह्म बाबा के संदेश को दुनिया में पहुंचाने के लिए विदेश में हैं और उन्होंने वहीं से अपना संदेश हम सब लोगों को पहुंचाया है। और इसी में इस संदेश के अंदर मन और आत्मा की शुद्धि का रहस्य भी छिपा हुआ है। जिसने इसे जाना वह तर गया। अंततः आत्मा का कल्याण ही मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। और यह संस्था मैं समझता हूं जो असली ताकत है व्यक्ति की, मनुष्य की, उसका एहसास कराता है। और वो ताकत शरीर नहीं है, वो ताकत आत्मा है। उससे साक्षात किस प्रकार से हो, क्योंकि हम उस परम पिता परमात्मा का ही वंश हैं और उससे साक्षात्कार हमारा नहीं है। तो हम सब लोगों का जो दुर्भाग्य था उसको सौभाग्य में परिवर्तित करने का काम मैं कह सकता हूं कि निश्चित रूप से संस्था कर रही है। वो आत्मा जो अजर है, अमर है, इसके बारे में गीता में कहा गया है, नैनम चिदंति शस्त्राणी नैनम दहति पावका नै चैनम क्लेदंत्यापो नै शोषति मारुता। तो इस प्रकार से जो आत्मा अजर है, अमर है और हमारे ही अंदर उसका निवास, और हमें उस आत्मा से परिचित कराना, उसका परिचय करवाना और परमात्मा के साथ उसका साक्षात्कार नहीं करना, केवल उसके साथ किस प्रकार से आत्मसात हो, इस प्रकार का सौभाग्य इस संस्था के साथ जुड़ा है उनको प्राप्त होता है। और अगर महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, जैसे मैंने पूर्व में कहा कि दुनिया में इसके समक्ष कोई संस्था ऐसी नहीं है, और यहां आने के बाद तो इसका एहसास मुझे नहीं सब लोगों को भी हो जाता है कि एक अलवेली संस्था है जिसने महिला सशक्तिकरण के मामले में नए और उच्च मानदंड स्थापित किए हैं। क्योंकि महिला सशक्तिकरण केवल भाषणों से नहीं होता, यह प्रत्यक्ष करने से अनुभव होता है जिस प्रकार से इस संस्था ने किया है। और मुझे सौभाग्य इस बात का भी प्राप्त हुआ है कि जिसमें संगठन के साथ, जिस पार्टी के साथ जुड़ा हूं, उसके सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी जी भी महिला सशक्तिकरण के मामले में इसी प्रकार के नए उच्च मानदंड स्थापित करने के काम में लगे हुए हैं। अगर मैं आज के इस कार्यक्रम की बात करता हूं, अगली बात पर आते हुए, तो निश्चित रूप में मीडिया के साथियों का स्वागत करते हुए कि हम सब लोगों की जो जिम्मेवारी है, जो इस दुनिया का वर्तमान में परिदृश्य है, उसकी अगर हम बात करते हैं तो आप लोगों की जिम्मेवारी छोटी नहीं है। आप केवल खबर नहीं देते बल्कि आप लोगों को एक दृष्टिकोण देने का भी काम करते हैं। और आप लोगों की भूमिका आज से नहीं है, जो इतिहास पढ़ते हैं, पुराणों की भी थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं, वो सब लोग नारद मुनि जी की भूमिका से तो परिचित हैं। मीडिया बंधुओं को नारद मुनि जो ब्रह्मांड के प्रथम पत्रकार ब्रह्म ऋषि हुए, उनके साथ जोड़ने का काम हम लोग कर सकते हैं। और नारद जी को भी प्रजापिता ब्रह्मा जी ने समाज को एकत्रित करने, इसको संगठित करने का कार्य और वरदान जो दिया, वो तीनों लोकों में भ्रमण करते हुए उसके कारण से उन्होंने उसका संदेश देने का काम किया। आज वो जिम्मेवारी आप सब लोगों के ऊपर है। आज दुनिया के अंदर किस प्रकार से अशांति है, आज दुनिया में जड़ और जमीन के कारण से, यानी कि कोई भौगोलिक विस्तार के अंदर लगा हुआ है, कोई अपने आर्थिक साम्राज्य को बढ़ाते हुए उसका विस्तार चाहता है, इसके कारण से आज दुनिया के अंदर गहन अशांति देखने को मिल रही है। कभी रूस और यूक्रेन का युद्ध दिखाई देता है, कभी हम सब लोग देखते हैं कि इज़राइल, ईरान, इराक और इस प्रकार के देश आपस के अंदर युद्ध के अंदर लीन दिखाई देते हैं, कभी पाकिस्तान भारत के अंदर पिछले दरवाजे से आतंकवादियों को भेज करके अशांत वातावरण पैदा करने का काम करता दिखाई देता है, कभी पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर युद्ध दिखाई देता है, कभी श्रीलंका के अंदर, कभी नेपाल के अंदर, कभी बांग्लादेश के अंदर, वहां के लोग किस प्रकार से सत्ता के लालसा के अंदर, और वो केवल सत्ता अपने काम के लिए नहीं, सामरिक दृष्टि से किस प्रकार से भारत को घेरा जाए, इस दृष्टि से वो लोग आज हमारे खास करके अखंड भारत का जो हिस्सा थे वो देश करते दिखाई देते हैं। मैंने बात की शुरुआत में की थी कि शुरुआत में एक बात कही थी कि संस्थान की नींव पाकिस्तान के अंदर रखी गई थी 1937 के अंदर। आज जो इतना बड़ा संस्थान जो दुनिया को एक अलग प्रकार की रोशनी देने का काम करता है, आज इसके जन्म स्थान पर जाकर के देखें तो किस प्रकार का हाल होगा, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। मैंने बहुत सारे विद्वान जनों से इस बात की चर्चा की है। जब बाबा ने इस संगठन का की शुरुआत की होगी, जब उनको दिव्य ज्ञान दिव्यता की अनुभूति हुई होगी, उन्होंने ये तो नहीं कभी सोचा था कि जिस जन्म अपने जन्म स्थान से उन्होंने इतने बड़े अभियान की शुरुआत की है, वो कभी सक्रिय रूप से इस अभियान का हिस्सा नहीं रहेगा, कभी नहीं सोचा था। लेकिन आज वो नहीं है। जब इस देश के अंदर बाबर का आगमन हुआ, उसी समय इस भारतवर्ष की धरती पर नानक साहब हुए, और जब औरंगजेब की विदाई हो रही थी तो गुरु गोविंद सिंह जी हुए, आज ननकाना साहब कहां है। इस जड़ और जमीन की लड़ाई हमारे हरियाणा की ही पावन भूमि कुरुक्षेत्र पर लड़ी गई, और वहां इस लड़ाई के निमित्त जो बने थे कंधार नरेश शकुनी, आज वो कंधार कहां है। तो जब मीडिया के दृष्टिकोण से देखते हैं, कई बार जब इस प्रकार के संगठन शांति की बात करते हैं, उस अखंड भारत की बात करते हैं, मानव मूल्यों की बात करते हैं, तो हमारे मीडिया के बंधु अपने मुंह को सीलते दिखाई देते। मैं सबकी बात नहीं करता। आज क्यों इस बात को वैश्विक पटल पर, तो बात छोड़ दीजिए, अब भारतीय मीडिया के परिदृश्य से ही हम लोगों को वो बातें सुनने को मिलती नहीं है। और कोई अखंड भारत की बात अगर कर दे मंच के ऊपर बैठा हुआ कोई विद्वजन विदुषी तो उसकी तरफ बड़ी संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। क्या हम सब लोगों की जिम्मेवारी नहीं बनती कि हम इस प्रकार से आज जो केवल प्रिंट मीडिया का दौर नहीं है, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया जिसको कह सकते हैं, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी धीरे धीरे करके, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी लोगों ने धीरे धीरे करके थोड़ा सा कम सुनना शुरू किया है। आज के दिन तो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, इसके ऊपर पूरा ज्ञान सुनने को और पढ़ने को मिल जाता है। लेकिन ये भी नहीं पता होता कि उसमें प्रमाणिक चीजें कौन सी हैं, अप्रमाणिक कौन सी हैं। और ये जो युग है ये खबरों का बड़ा तेज युग है, बहुत तेजी से इसके अंदर खबरों का प्रसारण होता है। एक खबर बनती है और सेकेंडों के अंदर पूरी दुनिया के अंदर फैल जाती है और उसका असर सालों साल तक रहता है। एक खबर कोई सूचना नहीं है, वो किसी के मन में उम्मीद भी जगा सकती है और वो डर भी पैदा कर सकती है। तो फिर ये सवाल उठता है कि हम क्या फैलाना चाहते हैं, हम डर या विश्वास, हम इंसानियत या नफरत। इस बात पर विचार करना पड़ेगा। अगर मीडिया ठान ले तो देश की दिशा बदल सकती है और ये भारतवर्ष दुनिया की दिशा बदलने की ताकत रखता है। पहल आप सब लोगों को करनी चाहिए। आज के दौर में जो सच्चाई है वो है कि वो जो दिखता है वो बिकता है, और जो बिकता है तो वही समाज में फिर टिकता है। और माउंट आबू की इस बहुत ही पवित्र धरती से जो संदेश उठता है वो है शांति का, सच्चाई का, आत्मसम्मान का। और मीडिया के पास वह शक्ति है जो इस संदेश को घर घर तक पहुंचा सकती है। ब्रह्म कुमारी आत्मा को जगाने का काम करती है और जो मीडिया है वो समाज को जगाने का काम करता है। और जब दोनों साथ आते हैं तो सिर्फ खबर नहीं बल्कि ये संगम समृद्ध सोच पैदा करता है और सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करने का काम करता है। आज देश को सिर्फ खबरों की जरूरत नहीं है, देश को दिशा देने वाली खबरों की जरूरत है। मीडिया अगर सिर्फ सवाल पूछेगा तो समाज उलझेगा, लेकिन अगर समाधान भी सुझाएगा, समाधान भी दिखाएगा तो समाज सुलझेगा। क्योंकि आपकी आवाज में बहुत ताकत है। आप गांव की कहानी को केवल देश नहीं दुनिया तक पहुंचाने का काम कर सकते हैं। और आज मैं यहां एक छोटा सा सुझाव भी आपको देकर के जाना चाहता हूं कि हम लोग कई बार जो नेगेटिव न्यूज होती है, क्योंकि जैसे मैंने कहा जो दिखता है वो बिकता है, उसके चक्कर में कई बार नेगेटिव न्यूज को लोग ज्यादा देखते हैं। तो क्या हम इस प्रकार का संकल्प इस दिव्य भूमि से लेकर के नहीं जा सकते क्या कि हम पॉजिटिव न्यूज फैलाना शुरू करें। सकारात्मकता बहुत जगह है, यहीं की अगर हम बात कर लें कितनी सकारात्मकता केवल यहीं नहीं है, देश के कोने कोने के अंदर आज ब्रह्म कुमारीज के सेंटर खुले हुए हैं, वहां से किस प्रकार से शांति पूरी दुनिया के अंदर हो इसका संदेश दिया जाता है। क्या हम यहीं से शुरुआत नहीं कर सकते क्या? हम कई बार देखते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज देने के लिए हम खबरों की सत्यता में नहीं जाते, कई बार जल्दबाजी में, कई बार थोड़ा सा भूल चूक भी हो जाती है, क्योंकि हमारे तो यहां व्यापारी भी जब हिसाब किताब करता है तो नीचे लिखता है भूल चूक लेनी देनी, हमने उसी को अपना एक मान लिया, भाई ठीक है भूल चूक तो लेनी देनी है, कर देते हैं भूल। लेकिन सत्यापन बड़ा जरूरी है। अगर हम खबरों को सत्यापित करेंगे तो ज्यादा समय लगता नहीं है, लेकिन अगर सत्यापित खबरें जाएंगी तो निश्चित रूप से जो आप लोगों की भूमिका है, और कई बार इस प्रकार के हमारे मीडिया के बंधुओं पर उंगलियां भी उठती हैं, वो उंगलियां उठनी भी बंद हो जाएंगी और समाज के अंदर एक सकारात्मक दृष्टिकोण भी उसके कारण से पैदा होगा। टीआरपी का चक्कर अगर थोड़ा सा छोड़ देंगे तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं इससे बहुत बड़ा फायदा ना केवल मीडिया जगत का होगा, आपका व्यक्तिगत भी होगा और समाज का भी होगा। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, हमारे मीडिया के बंधु हैं, ये कैमरे के पीछे खड़े होते हैं, लेकिन असल में आप की जो भूमिका है उसमें आज आप समाज के सामने खड़े होते हैं। आपकी एक खबर, क्योंकि मैं किसान हूं, अगर उसकी बात करूं तो किसान की उम्मीद बन सकती है, किसी युवा का आत्मविश्वास बन सकती है और किसी देश का भविष्य भी बन सकती है। तो इतनी संवेदनशीलता आपकी खबरों के अंदर है। तो मैं ज्यादा ना कहते हुए आखिर में मैं कहना चाहूंगा, आप सब मिल करके जो मजबूत समाज की एक नींव जो रखने में आपकी भूमिका हो सकती है, निश्चित रूप से आप उस भूमिका का निर्वहन करें। और आज मैं आखिर में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय द्वारा इसकी मीडिया विंग के माध्यम से आयोजित इस महासम्मेलन की एक जो अत्यंत सराहनीय और अनुकूल जो पहल है और आप लोगों को जो पटल उपलब्ध करवाया है, इसके लिए मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं। और इसके साथ साथ कि आपने सकारात्मक मीडिया के लिए जगत को वैल्यू बेस्ड मीडिया का मार्ग दिखाने के लिए इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, इस कार्यक्रम का आयोजन किया, इसके लिए भी मैं बधाई देता हूं। साथ ही आप मीडिया के साथियों को, क्योंकि केवल आज का नहीं 3 दिवसीय कार्यक्रम है, इसमें आप लोग मीडिया के बंधुओं को आध्यात्मिक शक्ति देने का भी इनको काम करेंगे। और इसके साथ साथ वैश्विक शांति की आवश्यकता क्यों है, इसके अलग अलग पहलुओं पर आप यहां चर्चा करने का काम करेंगे, इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। इसके अतिरिक्त समाज का जो चौथा स्तंभ है, इसको आप लोग आध्यात्मिक रूप से मजबूत करते हुए इसके सह परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के संदेश को आप तक पहुंचाना और आपके माध्यम से पूरी दुनिया तक पहुंचाने का जो बहुत ही एक, मैं कह सकता हूं, एक अनूठी पहल आप लोगों की है, इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और क्योंकि ये काम किसी एक का नहीं है, ये सब मिलकर के करते हैं, ये ईश्वरीय कार्य है। और इसके लिए कहा भी गया है, संगच्छध्वं संवध्वं संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। इतनी ही बात कह करके मैं आप सब से ये उम्मीद करता हूं कि जिस भरोसे के साथ इस संस्थान ने आप सबको, हम सबको यहां आमंत्रित करके इतनी ऊर्जा लगा करके और एक विशिष्ट प्रकार का संदेश जो पूरी दुनिया के अंदर शांति स्थापित करे वो अवसर उपलब्ध करवाया है, तो आइए हम सब मिल करके इस संस्थान के द्वारा इस दिए गए अवसर का लाभ उठाते हुए अपनी अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन करते हुए विश्व शांति स्थापना में अपना योगदान दें। इसी के साथ ओम शांति शांति शांति।
बहुत ही सुंदर विचार, शब्दों में भी शक्ति थी, भावनाओं में भी शक्ति थी। और जब आपने हमारे प्रधानमंत्री जी की बात कही तो मुझे याद आई वो बात कि रायपुर में जब भ्राता नरेंद्र मोदी जी पधारे थे तो उन्होंने ब्रह्म कुमारी के लिए ये कहा था कि ब्रह्म कुमारी के शब्द नहीं परंतु कर्म बोलते हैं, ब्रह्म कुमारी के शब्द नहीं परंतु कर्म बोलते हैं। तो बार बार नारी शक्ति की बात, तो यही भाव जागृत हुआ कि नारी नहीं तू अम्बा है, तू ही तो जगदम्बा है, और नारी करेगी जब श्रेष्ठ आचरण तो दुनिया कहेगी वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। और यही भूमिका ब्रह्मकुमारी संस्था निभा रही है। अब मैं गहरे मेडिटेशन के अनुभव के लिए आमंत्रित करने जा रही हूँ हमारी आदरणीय राजयोगिनी शीलू दीदी जी को। और मैं बताना चाहूंगी कि आदरणीय शीलू दीदी जी मेरी रोल मॉडल रही है। बचपन से मैंने 6 वर्ष की उम्र से देख रही हूँ और इनकी सकारात्मकता ने बहुत प्रभावित किया। आदरणीय शीलू दीदी जी वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षिका हैं और साथ साथ निर्देशिका राजयोग शिविर की, और कई टीवी चैनल में आपके प्रवचन आते रहते हैं, और साथ ही 5 महाद्वीपों में आपने लगभग 70 से भी अधिक देशों में भ्रमण करके अपने ज्ञान का अध्यात्म का प्रचार किया। और अगर एक बात कहना चाहूंगी कि आपके मुख में सरस्वती का प्रवाह है, तो अकेले हम बूंद हैं, मिल जाए तो सागर है, अकेले हम धागा हैं, मिल जाए तो चादर है, अकेले हम कागज हैं, मिल जाए तो किताब है, जीवन का आनंद मिलजुल करके रहने में ही है। और यही विशेषता है आदरणीय शीलू दीदी जी की। तो शीलू दीदी जी की मधुर वाणी में हम राजयोग मेडिटेशन का डीप एक्सपीरियंस करेंगे।
ओम शांति। मैं चाहूंगी कि मेरे बाद आप सभी भी कहेंगे ओम शांति, ओम शांति। शांति के सागर, प्रेम के सागर, सर्वशक्तिमान परमात्मा की अति प्रिय संतानों, मंच पर आसीन हमारे महानुभाव तथा सभा में उपस्थित सर्व मीडिया कर्मी, बहुत सुंदर विषय पर यह इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ है, वैश्विक शांति की आवश्यकता। मैं समझती हूँ वैश्विक शांति लाने के लिए पहले व्यक्तिगत शांति चाहिए, क्योंकि बूंद बूंद से सागर बनता है, बूंद बूंद से बहुत कुछ हो जाता है, और बूंद बूंद में इतनी शक्ति भरी हुई है जो वो सागर बना सकती है। पर शांति व्यक्तिगत के लिए भी हमें पहले ये समझना होगा कि शांति की परिभाषा क्या है, हम किसको शांति कहते हैं। कई व्यक्तियों से हमने ये प्रश्न किया है कि आप शांति की परिभाषा बताइए, तो हमें अलग अलग उत्तर मिले। किसी ने तो केवल यही कहा कि युद्ध न होना ही शांति है, लेकिन कई ऐसे देश हैं जहां युद्ध नहीं चल रहा है, तो क्या वहां शांति है? तो जवाब मिलेगा नहीं। फिर किसी से हमने पूछा, आप बताइए शांति की परिभाषा, तो उसने कहा आवाज का अभाव शांति है। किसी ने कहा युद्ध का अभाव शांति है, किसने कहा आवाज का अभाव शांति है। लेकिन क्या ये भी सही है कि जहां आवाज नहीं है वहां शांति है? आप मंदिर में जाइए, ढोल बज रहे हैं, कीर्तन हो रहे हैं, बहुत कुछ आवाज हो रहा है, लेकिन जो मंदिर में जाता है उस आवाज के बीच में भी उसको कितनी शांति मिलती है। और दूसरा व्यक्ति अकेला एक सुनसान शमशान घाट में चला जाए जहाँ कोई नहीं है, लगेगा वहां तो बहुत शांति है, लेकिन वहां अशांति की महसूसता होगी। भले आवाज नहीं है तो शांति केवल आवाज का अभाव या युद्ध का अभाव नहीं है। फिर तीसरे व्यक्ति से पूछा कि आप बताइए शांति की परिभाषा, तो उसने कहा जब हर एक व्यक्ति को रोटी कपड़ा मकान मिल जाएगा तब शांति होगी। अब ये भी कहाँ तक सही है, जिन देशों में एडवांस कंट्रीज में डेवलप्ड कंट्रीज में रोटी कपड़ा मकान की कोई कमी नहीं है, क्या वहाँ शांति है? तो जवाब मिलता है नहीं। तो रोटी कपड़ा मकान होना ही शांति का आधार नहीं है। फिर किसी ने तो यहां तक कह दिया कि जब विश्व में शांति होगी तब हमें शांति मिलेगी। अब क्या हमें इंतजार करना पड़ेगा कि पहले सारे विश्व में शांति हो तब मुझे शांति मिलेगी? इतनी देर तक इंतजार करना पड़ेगा? नहीं, वास्तव में शांति की परिभाषा बहुत बड़ी नहीं है। शांति ये मन की स्थिति है। अगर देखा जाए ये मन की स्थिति है। आप जैसा सोचेंगे वैसा ही अनुभव करेंगे। अगर हम एक इक्वेशन बनाएं तो हम एक इक्वेशन दे सकते हैं, थॉट्स इक्वल टू योर लाइफ। आप जो सोचते हैं वही अनुभव करते हैं। तो आपका जीवन सबसे पहले आपके विचारों पर आधारित है। तो शांति पहले मन की चाहिए, और वो शांति कहाँ मिलेगी? कहीं बाहर नहीं मिलेगी, ये आपके भीतर ही है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर शांति चाहिए तो अंदर जाइए। अंदर में सब कुछ है, बाहर कुछ भी नहीं है। अब अंदर में कहाँ जाएं जहाँ हमें शांति मिले? क्या शरीर में शांति रखिए? शांति तो हड्डी मांस का पुतला है। शरीर को डिसेक्ट करते हैं तो क्या निकलता है? रक्त, पस, मांस, हड्डियां। लेकिन शांति कहाँ है? शांति ये मन की स्थिति है, ये आत्मा का स्वभाव है, आत्मा का स्वधर्म है। और जहाँ आत्मा अपने स्वधर्म का अनुभव करती है वहाँ ही उसको सच्चा सुख और सच्ची शांति मिलती है। तो ये स्वधर्म हम किसको कहते हैं? हर चीज का अपना धर्म होता है। धर्म माना अंदर की धारणा, धर्म का मतलब स्वभाव भी कह सकते हैं। प्रकृति में भी अपना स्वभाव है। अग्नि का स्वभाव तेज तेज के साथ साथ गर्मी, हवा का स्वभाव वेग है, जल का स्वभाव शीतलता है। इसी प्रकार हर एक चीज का अपना स्वभाव है। तो आत्मा का भी अपना स्वभाव है। और सचमुच देखा जाए हर आत्मा का स्वभाव शांति है। इसीलिए हम सब शांति चाहते हैं। ऐसा कोई नहीं होगा जो अशांति चाहता होगा। भले अशांति फैलाएंगे अपने बोल से, अपने कर्म से, अपने व्यवहार से अशांति फैलाएंगे, लेकिन चाहेंगे फिर भी शांति, क्योंकि ये हर एक का मूल स्वभाव है। लेकिन कैसी बड़ी विडंबना कि जो चीज हमारे अंदर है हम उसे बाहर ढूंढ रहे हैं। और परिणाम स्वरूप एक कहावत है कि किसी ने काली बिल्ली को ढूंढा किसी अंधेरे कमरे में, और वो बिल्ली वहां थी नहीं, और वो ढूंढ ढूंढ के थक गया, उसको वो बिल्ली नहीं मिली क्योंकि वहां थी नहीं और अंधेरा कमरे में था। तो यही हम चाहते हैं कि हम शांति में जाएं, शांति शांति, लेकिन कहां भी हम उसी वक्त शांति का अनुभव कर सकते हैं, और उसका आधार है मेडिटेशन। तो हम कैसे मेडिटेशन करेंगे? पहले आत्मा अपने आप को पहचाने कि मैं कौन हूं। आपसे तीन बार ओम शांति कहलवाया, तीन बार ओम शांति का भी अर्थ है, ओम शब्द में तीन अक्षर है, अ उ और म, अर्थात मैं वही हूं जिसका स्वभाव शांति है। फिर दोबारा ओम शांति कहा, मैं वही हूं जो शांति के धाम से आई हूं, ये संसार मेरा घर नहीं है, ये तो मुसाफिर खाना है ये दुनिया, हम शांति के धाम से आए हैं इस सृष्टि रंगमंच पर अभिनय करने। और तीसरी बार ओम शांति का मतलब है कि मैं आत्मा उस परम पिता परमात्मा की संतान हूं जो शांति का सागर है, और यही सोच हमें शांति का अनुभव कराएगी। तो चलिए इस यात्रा पर हम चलते हैं और एक गहन शांति का अनुभव करते हैं। तो सीधा बैठिए, कमर सीधी करिए, अपने अंदर में झांकिए, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं क्यों इस दुनिया में आया, मुझे क्या करना है, मुझे कहां जाना है, ये पूछिए अपने आप से। और आपको भीतर से ही जवाब मिलेगा, मैं एक आत्मा हूं, एक सूक्ष्म ज्योति हूं, प्रकृति के मध्य विराजमान एक चमकता हुआ सितारा हूं, अति सूक्ष्म हूं, ये शरीर मुझसे भिन्न है, ये तो मेरा वस्त्र है जो कार्य करता हूं, वो तो मेरा अभिनय है, जहां मैं रहता हूं वो तो मेरा कर्म क्षेत्र है, लेकिन मेरा निवास स्थान तो पांच तत्वों से पार अखंड ज्योति का एक महतत्व है। जो शांति का धाम है, मन और बुद्धि से उसी धाम में पहुंच जाएं। एक अखंड ज्योति का महतत्व जहां चारों ओर सुनहरा लाल प्रकाश असीम शांति एक गहरी निर्संकल्पता और मैं आत्मा शांत स्वरूप इस शांति के धाम में अपने पिता परमात्मा जो शांति के सागर है उनके सम्मुख हूं और उनसे शांति की किरणें प्राप्त कर शांति की शक्ति का अनुभव कर रही हूं। चले जाइए एक शांति के सागर में पहचानिए अपने मूल स्वभाव को अनुभव करें अपने सच्चे स्वरूप को और ये शांति के प्रकंपन पृथ्वी पर भेजे ताकि विश्व में भी शांति आ जाए। हर आत्मा शांति का अनुभव करे और ये संसार सुख शांति से संपन्न हो जाए। ये शुभ भावना ये शुभ कामना हर एक आत्मा के प्रति फैलाए। ओम शांति।
गहरी शांति के पश्चात सभी को ऐसा लग रहा होगा कि अब आवाज की दुनिया से दूर चले, पर शांति के साथ आवाज में आना है। तो अब मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ भ्राता श्री मनीष वाजपेयी जी को, क्योंकि जब सच की आवाज मंच पर आती है तो हर खबर एक नई दिशा दिखाती है। भारतीय टीवी पत्रकारिता का एक सशक्त और जाना पहचाना नाम, सहारा मीडिया से शुरुआत कर लाइव इंडिया और इंडिया टीवी में लगभग दो दशकों तक अपनी प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज कराने वाले बेबाक एंकरिंग और पैनी राजनीतिक समझ के लिए प्रसिद्ध, वर्तमान में डीडी न्यूज में कंसल्टिंग एडिटर के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। तो मैं आमंत्रित कर रही हूं भ्राता मनीष वाजपेयी जी को। जोरदार तालियों के साथ आपका अभिनंदन हम मुस्कुराते हुए कर रहे हैं।
ओम शांति। जो लोग इधर उधर व्यवधान में कहीं ना कहीं घिरे हुए हैं, मैं सभी के चेहरों को देख रहा हूं, कृपया करके वो हमारी तरफ मुखातिब बोलें, क्योंकि आप इतनी दूर से आए हैं किसी न किसी वक्तागण को सुनने के लिए और हम यहां पर आए हुए हैं आपको कुछ बताने के लिए। तो इसलिए जो लोग बीच में कहीं व्हाट्सएप देख रहे हैं या पीछे कहीं दीवालों को ताक रहे हैं या कहीं बाहर देख रहे हैं, वो कृपया करके मंच की तरफ अपना ध्यान आकर्षित कर लें। आदरणीय मंचासीन अतिथिगण, पूज्य राजयोगिनी बहनें और हमारे राजयोगी भाई, मीडिया जगत से जुड़े हुए हमारे तमाम सम्मानित साथीगण और जो यहां पर तमाम शांति पथ के जो साधक हैं, उन सभी को मेरा प्रणाम। मैं अपना वक्तव्य शुरू करूं उससे पहले मेरे मन का ये उद्गार था और मैं ये उद्गार जरूर व्यक्त करना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा अपने परमार भाई साहब को। एक शिक्षक के तौर पर जो उन्होंने अपना उद्बोधन दिया, वो कहते रहे, संकोच भी था कि हाँ समय बहुत कम है उनके लिए, लेकिन फिर भी गागर में सागर उन्होंने भरने की कोशिश की और इसके लिए वो साधुवाद के पात्र हैं। और एक नेतृत्व कैसा होना चाहिए, मैं जब अपने सुभाष बराला भाई को जब मैं सुन रहा था तो एक नेतृत्व कैसा होना चाहिए, मुझे मैं आवाज और अंदाज का खिलाड़ी कह लीजिए या उस पेशे से जुड़ा हुआ कह लीजिए या इसी दुनिया का मैं जीविकोपार्जन करता हूं, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन जब मैं सुभाष बराला जी को सुन रहा था तो न जाने कितनी बार मुझे ऐसा लगा कि सुभाष जी हरियाणा से कैसे हैं ये, क्योंकि आज तक मैंने हरियाणा के किसी व्यक्ति का जो प्रोनंसिएशन है, जो उच्चारण है, वो इतना अच्छा मैंने नहीं सुना जो कि सुभाष जी का सुना। और मैं मतलब अभिभूत हो गया उनके इस संबोधन से, उनके उच्चारण से, दोष रहित उच्चारण, और हरियाणा के व्यक्ति का हो, मैं समझता हूं कि ईश्वर का दूसरा अवतार होंगे कि जो सुभाष भराला जी ने जो यहां पर संबोधन दिया है। नहीं, निश्चित तौर पर। और मैं इसलिए भी कहता हूं कि बीच बीच में उन्होंने कुछ चीजों को ऐसे कहा कि एक नेता को किस तरीके से मुखातिब होना चाहिए, कैसे लोगों को संबोधित करना चाहिए, इसकी एक वानगी हमें सुभाष बराला जी के संबोधन में दिखी। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत साधुवाद कि आपने बहुत अच्छी तरीके से अपने पूरे संबोधन को समाप्त किया और शुरुआत की। बातें बहुत सारी कही जा सकती हैं लेकिन समय बहुत सीमित होता है, और मैं तो पत्रकार हूं और मेरा काम है बोलना, और मैं अगर अपने अनुभव के संसार को अगर कुछ क्षणों में कुछ मैं बोलना चाहूं तो 10 मिनट तो किधर हवा हो गए, शायद संबोधन में ही 10 मिनट खत्म हो जाएंगे। तो मैं जल्दी ही अपनी बात पर आता हूं, और बात इसलिए बड़ा जरूरी है क्योंकि हम विश्व शांति की बात करते हैं, हमारे सामने यहां पे लिखा गया है कि वैश्विक शांति की आवश्यकता, और मैंने उसके बाद में बहन जी को सुना और जब शीलू दीदी ने बोला तो मुझे ऐसा लगा कि वो बात जो बोल रही थी वो मेरे मन के उद्गार थे जो उन्होंने बोला। हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, थ्योरेटिकली बहुत अच्छी बातें करते हैं, आइडियली बहुत अच्छी बातें करते हैं, शांति होना चाहिए, शांति से रहना चाहिए, कौन चाहता नफरत हो, लेकिन फिर भी पिछले 50-60 साल में कोई इस बात को दावे के साथ कह सकता है कि शांति बढ़ी है और नफरत कम हुई है, जबकि इतने संस्थान बन गए हैं, इतने आश्रम खुल गए हैं, इतने बाबा आ गए हैं, हर रोज टीवी पे एक नया बाबा मुझे अवतरित होता हुआ दिखाई पड़ता है, हर रोज एक कोई नया संस्थान खड़ा हुआ आता है और मैं भगवान की भक्ति में लीन हूं, मैं प्रभु से दिन रात बात करता हूं, बहुत अच्छे लोग हैं, मैं किसी के ऊपर कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं, मेरा उद्देश्य भी ये नहीं है, लेकिन कम से कम कोई रोग अगर आपके शरीर में है तो उसका पोस्टमार्टम होना बहुत जरूरी है, मतलब उसका डायग्नोस होना बहुत जरूरी है। मेरे एक रिलेटिव थे, कानपुर में एडमिट थे, और उनके पैर में कोई बीमारी हुई और पैर लगातार काटा जा रहा था, कभी यहां चीरा लग रहा था, कभी यहां चीरा लग रहा था, कभी यहां चीरा लग रहा था। कानपुर शहर तो ठीक ठाक शहर है, कोई ऐसा तो नहीं कह सकते गांव है, लेकिन उनकी बीमारी को डायग्नोस ही नहीं किया जा रहा था। मैंने जब उनको एम्स लेके आया तो वो 2 दिन में उनकी चीजें डायग्नोस हो गई, वो ठीक हो गई। तो ये तो शारीरिक बीमारी थी जिसका जिक्र किया, लेकिन समाज में जो बीमारी है उसका हमें डायग्नोस करना बहुत जरूरी है। और डायग्नोस इसलिए करना जरूरी है क्योंकि जब तक हम डायग्नोस करेंगे नहीं बीमारी का पता चलेगा नहीं, और बीमारी का पता चलेगा नहीं तो जैसे मैंने अभी आपसे सवाल किया और सब लोग चुप थे, और वो स्वाभाविक है कि पिछले 50 साल में क्या शांति का 2% ग्राफ, 10% ग्राफ, नहीं मनीष जी ऐसा करते हैं 50-50 तक तो हो गया, 50% शांति है और 50% नफरत है।
शायद कोई नहीं कह पाएगा। उसकी वजह यह है कि प्रॉब्लम कहां पर है, उसका डायग्नोस कैसे करना है, जिनको डायग्नोस करना है हो सकता कि शांत के अग्रदूत वही बने हुए हों समाज में, क्यों कथनी और करनी में अंतर आता है, और कथनी और करनी में अंतर है तो फिर चीजें ठीक नहीं हो पाएंगी। यानी कि जो हम कह रहे हैं वही हम करें, जो हम व्यवहार में हैं वही आचार विचार में भी हो तो ठीक है। और यहां पे चूंकि हमारे तमाम पत्रकार मित्र बैठे हुए हैं, और ज्यादातर लोग, मैं ये मानता हूं, ज्यादातर लोग आंचलिक पत्रकारिता से मुलव्विज हैं, जुड़े हुए हैं, एसोसिएटेड हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। राष्ट्रीय पत्रकारिता में पिछले 10-15 साल से कोई एसोसिएटेड हो, क्या कोई हाथ उठा सकता है जो दिल्ली में रहकर पत्रकारिता कर रहा हो, जिसने 15-20 सालों से लगातार दिल्ली में रहा हो? शायद नहीं। आंचलिक पत्रकार सभी लोग हैं, अलग अलग स्टेट से, शहर से आए हुए हैं। मेरा अनुभव है कि मैंने राष्ट्रीय पत्रकारिता को भी, और मैंने आंचलिक पत्रकारिता को न केवल किया है बल्कि मैंने बहुत गहराई से अनुभव किया है। मैं इसलिए बात कह सकता हूं और बहुत दावे के साथ कह सकता हूं क्योंकि मैंने इसको स्वयं में अनुभव किया हुआ है। विश्व शांति की बात कर रहे हैं, वैश्विक शांति की बात कर रहे हैं, हम लोग ट्रंप की बात कर रहे हैं, हम लोग ईरान की बात कर रहे हैं, युद्धों की बात कर रहे हैं, यूक्रेन की बात कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी बात है साहब। हम बहुत छोटे लोग हैं, हमारी बात को ट्रंप सुनेगा तो क्या हमें तरफ देखेगा भी नहीं, हम बहुत छोटे लोग हैं। हम क्यों इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हम क्यों बात कर रहे हैं? हम यूक्रेन की जंग आज पिछले 3-4 साल से ज्यादा हो गए चल रही है, सब लग गए, अभी तक नहीं रुक पाई है, हम रोक लेंगे क्या? या इसमें से कोई व्यक्ति कहे कि हाँ हम रोक लेंगे? मेरा कहने का मतलब यह है कि हम शून्य से स्टार्ट करते हैं चीजों को, और शून्य से जब स्टार्ट करते हैं तो हम ये पाते हैं कि सबसे पहले एक व्यक्ति के रूप में हम एक पत्रकार को देखते हैं। और सुभाष जी बैठे हुए हैं, सुभाष जी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा हमारी तरफ जो बात मैं कहने जा रहा हूं। पत्रकार एक व्यक्ति है, एक इंसान है, उसका भी सुख है, उसका भी दुख है, उसका भी परिवार है, उसको भी दर्द होता है, उसको भी तकलीफ होती है। लेकिन इतने साल गुजर जाने के बाद आज तक सरकारें कोई भी आई हों, सरकारें कोई चली गई हों, नेतृत्व किसी का भी रहा हो, और मुझे करेक्ट करिएगा आप लोग हाथ उठा के, मैं चुप हो जाऊंगा, क्या किसी सरकार ने किसी पत्रकार के कल्याण के लिए, पत्रकार के हितों को सोचते हुए कोई कार्य किया है? तो जब किसी पत्रकार के हित के लिए कोई कार्य नहीं किया गया है तो पूरे समाज को सुधारने का बीड़ा और ठेका क्या पत्रकार ने ले रखा है क्या? मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, मैं ताली बजाने के लिए बात कह ही नहीं रहा हूं, मैं उस बीमारी को डायग्नोस करने के लिए बातें कह रहा हूं कि आप उस दम तक पहुंचे। और चूंकि आप विधि व्यवस्था से मुलव्विज हैं, आप विधि व्यवस्था में जुड़े हुए हैं, आप प्राइवेट बिल लाके इस चीज को रख सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं रहा है, लेकिन रख पाएंगे नहीं रख पाएंगे इसके बारे में हम कह नहीं सकते। मैं इसलिए कहता हूं ये बात कि मैंने व्यक्तिगत तौर पर अनुभव किया है कि एक पत्रकार नौकरी करता रहा करता रहा करता रहा, बच्चे को सोचा आज बुखार है कल बुखार है, उसकी पत्नी ने वहां एडमिट करवाया यहां एडमिट करवाया और उसका बच्चा चल बसा। आप उस दर्द का अंदाजा लगा सकते हैं? हम विश्व शांति की बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम अपना कुटुंब तो संभाल नहीं पा रहे हैं। अगर मैं गलत हूं तो कृपया करके हाथ उठाइएगा जरूर। वो एक पत्रकार एक इंसान है, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि किसी सरकार ने आज तक पत्रकारों के हित के लिए, कल्याण के लिए कोई काम नहीं किया है, किसी ने भी नहीं कोई काम किया है। और वो क्यों नहीं काम किया है उस पर मैं जाना नहीं चाहूंगा। हर वो पत्रकार जो इस समय हमारे समक्ष है वो ये समझ रहा है, मेरी बात को समझ रहा है, और बात कहां तक पहुंचनी चाहिए वो भी समझ रहा है। तो जब पत्रकार के जीवन में क्रांति ही क्रांति है, सुबह क्रांति है, शाम को क्रांति है, सुबह पत्नी चिल्ला रही, शाम को बच्चा कोई डिमांड कर रहा है, ऑफिस की रिक्वायरमेंट ऐसी, भाई साहब अगर आज नहीं आए तो कल से तुम ऑफिस मत आना, अब कल से अगर ऑफिस नहीं आना तो महीने का 15-20 हजार रुपए जो रुपए मिलता है वो व्यक्ति कौन सा विश्व शांति लाएगा मुझे बताएं कृपया करके। हम किस विश्व शांति की बात करेंगे? और जितने लोग यहां उपस्थित हैं इतनों को नहीं, मैं पूरे देश के पत्रकारों को, मेरा पूरे देश में प्रवास रहता है, मेरे पूरे देश के हर, मुझे लगता कोई राज्य कोई शहर नहीं छूटा होगा जिससे, जिनके साथ डायरेक्ट मैंने बात ना की हो। मैं हर शहर में जाता हूं और हर जगह पत्रकारों से मिलता हूं और सबसे यही पूछता हूं मैं कि क्यों भैया सैलरी टाइम पर मिल रही है क्या? मेरा पहला सवाल होता है कि क्या सैलरी आपको समय पर मिल, भैया मिल जाता, अभी एक महीने का डिले चल रहा है, पिछले महीने 5,000 रुपए काट के दी थी, इस महीने देखो अब देते कि नहीं देते।
कोरोना के दौरान, बीमारी के दौरान किसी को पता है कितने पत्रकार मरे? नहीं पता होगा, कोई पब्लिक डोमेन में गणना ही नहीं है इसकी। लेकिन मैं आपको यह बताता हूं कि पब्लिक डोमेन में गणना होने के ना होने के बावजूद भी जो कहते रहे कि हम पत्रकार हैं, हमारे पति पत्रकार हैं, जिला में वो पत्रकारिता करते रहे और बाद में उनके पास चार लेटर नहीं मिले जिससे वो सिद्ध कर सके कि वो पत्रकार थे, और जो सहायता राशि की घोषणा दिल्ली से की गई नहीं मिल पाई, क्योंकि भाई दिल्ली को चाहिए पूरा उनका बायोडाटा कि आपने कहां से पत्रकारिता की पढ़ाई की है, आपने उसके बाद पहला ऑर्गेनाइजेशन जो ज्वाइन किया उसका लेटर, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया उसका लेटर, फिर आपने इस्तीफा दिया उसका लेटर, फिर आपका वर्किंग एक्सपीरियंस का लेटर, इतने सारे लेटर। वो पत्रकार जिसने कभी डीएम के आगे कुछ देखा नहीं और बस शुरू हो गया कैमरा लेकर, वो तो सोच रहा हम तो पत्रकार हैं, और वहां से लेटर आ गया यू आर ऑथराइज फॉर द न्यूज कवरेज। जितने भी लोग यहां बैठे हुए हैं, चैनल आपको क्या देता है? चैनल आपको एक लेटर पकड़ाता है, यू आर ऑथराइज फॉर द न्यूज कवरेज, यू आर नॉट अपॉइंटेड एज ए रिपोर्टर, बिकॉज जैसे ये शब्द लिख दिया जाएगा यू आर अपॉइंटेड एज ए रिपोर्टर, चैनल घिर जाएगा। अगर वो पत्रकार को कहीं कोई दिक्कत हुई तो चैनल परेशानी में जाएगा, चैनल चाहता नहीं है यार, तुम मजदूर हो, मजदूर बने रहो। और माफ करिएगा, जिन लोगों को देखकर लोग नए पत्रकार बन रहे हैं, जिन लोगों को देखकर लोग नए एंकर बन रहे हैं, जिन लोगों को देखकर जो नए रिपोर्टर बन रहे हैं, 140 करोड़ के देश में अगर उनकी गिनती करिए आप तो 10, 20 मैक्सिमम 100 आप मान लीजिए, जिसमें हम स्थानीय बड़े पत्रकारों का नाम लेते हैं। और वो बड़े पत्रकार कैसे हैं, क्यों हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, मैं उसके तह में नहीं जाऊंगा। लेकिन देश की जो असली पत्रकारिता कर रहे हैं वो आंचलिक, जो आप सब लोग बैठे हुए हैं, जो तमाम अलग अलग राज्यों से आए हैं, आपकी रिपोर्ट को उठा के चैनल हजारों लाखों रुपए कमा लेता है और आपको बदले में 5,000 रुपए भी समय से नहीं देता है। क्योंकि जब कोई खबर आती है कहीं दूर दराज से तो एक छोटी सी खबर होती है उसको बड़ा करता है चैनल। मुझे लगता है कहीं विषयांतर ना हो इसलिए मैं अपनी बात को यहां पर रोक रहा हूं कि मुझे लग रहा है कि मैं शायद कहीं और चला जा रहा हूं और बात यहां पर विश्व शांति की हो रही थी। मैंने इसलिए कहा कि व्यक्ति से ही विश्व की शांति आनी है। मैं बहुत थ्योरेटिकल नहीं रहता हूं। जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति का अनुभव होगा, जिस व्यक्ति ने जमीन से लेकर, मतलब मैं मूलतः रहने वाला हूं कन्नौज उत्तर प्रदेश का, घंटी बज गई है, मेरा तभी शुरुआत भी नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, फिर कभी कोई अगर लेक्चर मिलेगा, मौका मिला तो देंगे जी। मैं उसी पे आ रहा हूं, मैं बात को समाप्त कर रहा हूं, समस्याएं बहुत हैं और मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि मेरे साथ में ऐसा है कि मुझे तकलीफ होती है। मैंने देखा है कि कैसे एक रिपोर्टर सामने, एक मां बैठी हुई है, मां के सामने बेटे की लाश पड़ी हुई है और उसको प्रेशर दिया जा रहा है कि भाई साहब बाइट लो, तुरंत भेजो, बाइट लो, तुरंत भेजो। यार एक बात बताओ, जो मां रो रही है अपने बेटे के गम में, उसको हम कहें कि अच्छा मैडम बताइए कैसा लग रहा है आपको? ऐसे हजारों अनुभव हैं, बहुत अनुभव है, मतलब शुरू हो जाऊंगा तो शायद बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं घंटी बज चुकी, मुझे बार बार दिमाग में ये है। सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूं कि एक तरफ तो ठीक है कि हम लोग विश्व शांति की बात कर रहे हैं, हमें करना चाहिए, हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन व्यक्ति की शांति होना भी जरूरी है, व्यक्तिगत तौर पर मन का शांति होना जरूरी है। आध्यात्मिक तौर पर हमारी संस्था, चूंकि मैं खुद भी जुड़ा हुआ हूं और मैं इसको महसूस भी करता हूं, बहुत अच्छा काम है और मैं स्वयं अनुभव करता हूं, ये भी अनुभव के आधार पर भी बता रहा हूं, क्योंकि शांति प्राप्त होती है जब आप उसको आचरण में, अपने आचार व्यवहार में ढालते हैं। तो ब्रह्मा कुमारी संस्थान का कोई योगदान नहीं है, अतुलनीय है, इस बात में मैं कहता हूं, क्योंकि जब हम आध्यात्मिक धरातल पर उतरते हैं, लेकिन जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। हम अगर बिल्कुल आध्यात्मिक हो जाएंगे तो शायद हम घर में रह नहीं पाएंगे, फिर हम कहीं पता नहीं, मतलब हमारी सोच अलग हो जाएगी। तो जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है, आध्यात्म का और भौतिकता का, और भौतिक संतुलन के लिए जीवन में अर्थ का युग है, अर्थ जरूरी है, और अर्थ के लिए वो कल्याण जरूरी है कम से कम कोई चैनल, कोई अखबार, कोई व्यक्ति आपको हायर करे
तो ये पैमाना तय हो कि भाई साहब आपको 15,000 रुपए में हायर किया जाएगा और हर साल आपका 10% इंक्रीमेंट होगा और निकालने से पहले 3 महीने का नोटिस दिया जाएगा। ये परिस्थितियां बिल्कुल अकाट्य हैं, जैसे पूरब में सूरज निकलता है। कुछ ऐसे फैसले सरकार की तरफ से हो जाए, कोई बिल आ जाए, ताकि पत्रकार निर्द्वंद्वता पूर्वक अपना कार्य कर सके और फिर वो अपनी शांति भी करेगा। उसे मालूम है कि अगर नौकरी छूटेगी तो 3 महीने का हमको दिया जाएगा नोटिस पीरियड, 3 महीने में अपनी ढूंढेंगे नौकरी और तब वो खुद के परिवार का लालन पालन भी करेगा और शायद मुझे लगता है कि वो विश्व शांति की कामना करेगा। मैं माफी चाहूंगा अगर मैंने कोई गलत बात कही हो, लेकिन समय चूंकि बहुत कम है, मैं कहने तो आया था विश्व शांति के लिए, लेकिन चूंकि श्रीमान जी चूंकि राज्यसभा में है, हमारा उच्च सदन कहलाता है, विद्युत जनों का सदन कहलाता है, और मुझे लगता है कि अगर मेरी बात का 1% भी अगर सहमत हो तो कृपया करके प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आए और रखिए आप सामने, आपका नाम इतिहास में दर्ज होगा, भले ही आपकी पार्टी आपके साथ में हो या ना हो, प्रधानमंत्री आपके साथ में ना हो, लेकिन ये मैं जानता हूं कि भारत का एक एक पत्रकार आपका ऋणी होगा कि कम से कम आपने वो बात कहने की साहस की जो बात कोई नहीं कह पाता है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी नहीं, वो अब राजनीति में नहीं जाएंगे।
भ्राता जी, बहुत ही सुंदर विचार थे आपके और वाकई में सभी मीडिया बंधु उस गहराई में चले गए, लेकिन तब एक विचार कौन रहा था मनीष भाई, आप सुनिएगा, कि रामायण में दो व्यक्ति थे, एक विभीषण और एक कैकेयी। विभीषण रावण के राज्य में रहता था फिर भी नहीं बिगड़ा, कैकेयी राम के राज्य में रहती थी फिर भी नहीं सुधरी। तात्पर्य, सुधरना और बिगड़ना केवल मनुष्य के हाथ में है, उसकी सोच में है, और सकारात्मक सोच के विकास के लिए आप सभी यहाँ पहुंचे हैं। अब मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ भ्राता नरेश कौशल जी को, एडिटर दैनिक ट्रिब्यून चंडीगढ़, और आपको कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं अंग्रेजी हिंदी पंजाबी में, आपके नियमित समाचार आते रहते हैं और साथ ही कई पुरस्कार भी आपने प्राप्त किए हैं और पत्रकारिता प्रिंट मीडिया में आप एक जाना पहचाना नाम है, तो आप एक वरिष्ठ पत्रकार भी रहे। आपकी लेखनी में समाज में जागरूकता और प्रकाश फैल रहा है। सच लिखना आसान नहीं होता पर जरूरी होता है, क्योंकि यही समाज का आईना होता है। तो मनीष भाई ने भी यही विचार रखे और अब मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ भ्राता नरेश कौशल जी को, और इनके द्वारा ही उत्तर भारत के लोकप्रिय ट्रिब्यून ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित दैनिक ट्रिब्यून के रविवार परिष्ठ में प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा महिलाओं को सौंपी नेतृत्व समता व संबल का अधिकार दिए जाने की प्रामाणिक व सार गर्भित जानकारी वाला एक लेख मीडिया विंग के राष्ट्रीय संयोजक ब्रह्म कुमार डॉक्टर शांतनु भाई से बातचीत कर वरिष्ठ पत्रकार अरुण नेथानी द्वारा लिखा गया। तो वाकई में 100% नेतृत्व क्षमता आपके भीतर है, तो मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ भ्राता नरेश कौशल जी को, जो आपको इस समाचार पत्र से भी अवगत कराएंगे। तालियों के साथ अभिनंदन, क्योंकि बहुत बड़ा लेख प्रकाशित हुआ और हमारे मुख्य अतिथि और साथ ही मंच पर आदरणीय सभी सम्मान्य अतिथि गणों को ये समाचार पत्र दिया जा रहा है कि किस प्रकार प्रिंट मीडिया में एक ताकत है, लेखनी में एक ताकत है, और ये लेखनी निश्चित रूप से समाज में सकारात्मकता का प्रचार करती है। इसीलिए हमें अपने अंदर मीडिया बंधुओं से एक रिक्वेस्ट कि इस गहराई में जाएं, कि शमशान बनाना न सीखें। अरुण नैथानी जी को भी मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी, आप भी मंच पर आ जाएंगे और साथ में सम्माननीय अतिथि जनों के साथ जिन्होंने ये लेख लिखा है, आप भी मंच पर सादर आमंत्रित हैं, क्योंकि प्रिंट मीडिया में ऐसा समाचार आना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि को दर्शाता है।
ओम शांति। अपना उद्बोधन आरंभ करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि हमें यहाँ आमंत्रित कर किया गया, जो हमें सौभाग्य मिला, हमने प्रयास किया कि अग्रिम रूप से यहाँ आने से पहले ही हम कुछ ना कुछ, ये जो हमें सौभाग्य मिला है, इसका कुछ ना कुछ हम वापस लौटा सकें। तो एक पृष्ठ पूरा हमने ये विश्व, जो विश्वविद्यालय ऐश्वर्य विश्वविद्यालय है, इसके कामकाज, इसके उद्देश्यों को लेकर पूरा पृष्ठ दिया, और इसके लिए मैं आभार व्यक्त करूंगा अरुण नथानी जी, जो हमारे मेरे सहयोगी हैं, नंबर दो में दैनिक ट्रिब्यून में मेरे साथ हैं। इन्होंने ही, ये शांतनु जी हमारे पास चंडीगढ़ आए थे, उसी के साक्षात के आधार पर ये लिखा गया है। तो इसके लिए अरुण जी का विशेष रूप में और शांतनु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। वक्ता बहुत अपने विचार उद्गार व्यक्त कर चुके हैं, समय की सीमा होती है, और पहले किसी भी वक्ता पे घंटी नहीं बजी। जब मेरा समय आ रहा था, मुझे यह डर सता रहा था कि एक बजने को हो रहा है, मुझे तो शायद कहीं ऐसा ना हो कि दो चार पंक्तियां बोलूं और घंटी बज जाए, तो मैं क्षमा चाहूंगा, क्योंकि मेरा उद्बोधन जो मैंने प्रयास किया है वो मीडिया के लोगों के लिए, जो ये विषय है, इस विषय में कैसे क्या करना चाहिए, इसका मैंने प्रयास किया है, लिखकर लाया हूं मैं, और कुछ बातें वैसे भी मैं करना चाहूंगा। विश्व शांति की आवश्यकता, मीडिया की भूमिका के विषय को लेकर आज के उद्बोधन सत्र में शिरकत कर रहे आदरणीय सुदेश दीदी जी, शीलू दीदी जी, मनीष वाजपेयी जी, मेरे भाई सांसद आदरणीय सुभाष बराला जी, कुशाभा ठाकरे विश्वविद्यालय के कुलपति मान सिंह परमार जी, मानद शिष्ट संपादक तान्या पटनायक जी, और सभागार में उपस्थित सज्जनों, देवियों और मेरे मीडिया के सहयोगियों, आप सभी को मेरा सादर और स्नेहशील अभिवादन, नमन, और मुझे आमंत्रण का गौरव प्रदान करने के लिए, खास तौर पे जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं कि मीडिया के जो प्रभारी हैं यहां शांतनु जी, उनका हृदय की गहराइयों से आभार। इससे पहले कि मैं अपना वक्तव्य आगे शुरू करूं, मैं वाजपेयी ही जी के, एक तो उनको मैं बधाई देता हूं कि उनके जो उद्गार थे, जो उन्होंने, जो आंशिक अंशकालिक पत्रकार हैं, उनके बारे में जो बातें कही बिल्कुल सही हैं, लेकिन मुझे लगा कि बहुत विस्तार से ये विषयांतर हो रहा था। मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं, लेकिन इसके साथ ही मैं कुछ अपनी अलग राय भी रखता हूं। उन्होंने यहां दावे से कहा कि किसी भी सरकार ने पत्रकारों के लिए, खास करके आंशिक या दूसरे पत्रकारों के लिए, कोई भी कल्याण का कार्य नहीं किया है। मैं क्षमा के साथ वाजपेयी ही कहना चाहूंगा कि आज मेरा भाई सुभाष बराला यहां उपस्थित है, और मैं बड़े गर्व के साथ कहना चाहूंगा कि इनके नेतृत्व में, खट्टर साहब के नेतृत्व में, सैनी साहब के नेतृत्व में, हरियाणा सरकार ने पत्रकारों के लिए 60 वर्ष की उम्र होते ही पेंशन की घोषणा की। पहले 10,000 और फिर 15,000। इस मंच के सुभाष बराला के माध्यम से मैं हरियाणा सरकार का आभार भी व्यक्त करना चाहूंगा, क्योंकि हरियाणा सरकार के इस फैसले के बाद देश के बहुत से जो संस्थान हैं, बहुत से जो राज्य हैं, वहां भी जो है पेंशन का जो है वो नीतियां बनाई गई है। तो चलिए, नीड ऑफ ग्लोबल पीस, रोल ऑफ मीडिया के विषय पर चर्चा की शुरुआत कुछ इस तरह से करते हैं। कलम उठे तो अमन की कहानी लिखी जाए, कलम उठे तो अमन की कहानी लिखी जाए, हर एक खबर में इंसानियत दिखी जाए। मीडिया अगर ठान ले दिलों को जोड़ना तो धरती पर जन्नत की निशानी लिखी जाए। विश्व आज सर्वाधिक अशांत दौर के गुजर रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अशांति की वजह से चारों तरफ भय और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। व्यक्ति के स्तर से राष्ट्र स्तर तक, राष्ट्र से लेकर विश्व स्तर तक स्थिति चिंताजनक है। कोरोना काल से लेकर यूक्रेन युद्ध और आजकल के अमेरिका, इजराइल और ईरान द्वंद्व के संघर्ष ने दुनिया के अरबों लोगों के जीवन को अशांत बनाकर रख दिया। हाल के दशकों में वैश्वीकरण और उदारीकरण के बाद दुनिया को एक वैश्विक गांव बनाने का जो सपना देखा गया था, वो सपना जो है वो ध्वस्त होता नजर आ रहा है। ऐसे हालात में नीड ऑफ ग्लोबल पीस एंड रोल ऑफ मीडिया विषय आज निश्चित रूप से समय की जरूरत है। आज यहां संयुक्त परिवार एकल परिवार में बदलते जा रहे हैं। जैसे कहते हैं कि चैरिटी बिगन्स एट होम, शांति की जब हम विश्व शांति की बात करते हैं तो पहले परिवार की शांति की बात करना जरूरी है। दाम्पत्य जीवन में टूटन का प्रचलन बढ़ रहा है। मानव स्वभाव, विशेषकर भाग दौड़ भरी जिंदगी जी रहे युवा पीढ़ी में सहनशीलता, धैर्य का क्षरण हो रहा है। परिवार से लेकर समाज तक और समाज से लेकर देश विदेश तक मानव मनोविकारों का संतरास हमारे भाईचारे को, विश्व बंधुत्व को, हमारे सपनों को चकनाचूर कर रहा है। सोचा तो यह था कि तकनीकी उन्नति समाज को और देश को जोड़ने का काम करेगी, लेकिन उल्टे दुनिया संघर्षों में उलझी दिखाई पड़ रही है। पूरी दुनिया में युद्ध, मृत्यु, तबाही, विस्थापन और मानवीय विपदाओं का अंतहीन सिलसिला चल निकला है। निस्संदेह ब्रह्म कुमारी मिशन विपदाओं के सिलसिले को थामने में आध्यात्मिक चिंतन के माध्यम से अथक प्रयास कर रहा है, लेकिन इस मिशन के साथ साथ मीडिया भी शांति के लिए हो रहे प्रयासों में अपना भरसक योगदान करने लगे, अपनी सक्रिय भूमिका निभाने लगे, तो इस दिशा में विश्व जनमत और मजबूत हो सकता है। पत्रकार युद्ध का सच बताने के साथ साथ अगर बुद्ध के सच को भी उजागर करें तो यह समुची मानवता के लिए कल्याणकारी होगा। संयोग से आज बुद्ध पूर्णिमा भी है और वैशाख पूर्णिमा बहुत महत्व रखती है, और इसके साथ ही आज एक और महत्वपूर्ण दिन है, संयोग से श्रमिक दिवस भी है, तो इसके लिए बुद्ध परमा की भी मैं मंचासीन जो हमारे महानुभाव हैं और आपको सबको बधाई देता हूं। इस मंच से उल्लेख जरूरी है कि जिस नारी के महत्व, जिस नारी की शक्ति को आज विश्व में पहचान मिलने लगी है, सरकारें 50%, 35% का आरक्षण देने का प्रयास और प्रचार कर रही हैं, उस नारी शक्ति के महत्व को ब्रह्म कुमारी मिशन के संस्थापक ब्रह्मतुल्य प्रजापिता ने कई दशक पूर्व आंक लिया था। आपकी इस संस्था में 35% या 25% या 50% नहीं, बल्कि 100% आरक्षण नारी शक्ति के लिए कब का हो चुका है, और यही हमारे आज के जो आलेख हमने लिखा है, यही उसका शीर्षक भी है। शांति वह होती है जहां देवताओं का वास होता है। आपके प्रणेता श्री ब्रह्मा भारतीय संस्कृति के उस संदेश को पहले ही आत्मसात कर गए थे, वह संदेश जिसमें कहा गया है, यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमनते तत्र देवता। शांति प्रिय बंधुओं, बहनों, भाइयों, इस मंच के मुझे यह बताते हुए भी गर्व का अनुभव हो रहा है कि जो हमारा ट्रिब्यून संस्थान है उसका और ईश्वरी विश्वविद्यालय का, इसमें बहुत सी समानताएं हैं। आपके इस संगठन को 90 वर्ष होने को हैं, जैसे कि 37 में कराची के शुरुआत हुई, उसी तरह द ट्रिब्यून ट्रस्ट पब्लिकेशन भी अपने 145 वर्ष पूरे कर रहा है। और मजे की बात यह है, संयोग की बात है कि पाकिस्तान से ही आपका मिशन आया और पाकिस्तान से ही लाहौर से वो कराची से आए और हम उनके साथ साथ ही लाहौर से शिमला, फिर अम्बाला और फिर चंडीगढ़ में पहुंचे हैं। और आदरणीय सुरेश दीदी जी, मैं ये भी बताना चाहूंगा, जैसे आपका 100% महिला आरक्षण है, ट्रिब्यून में भी महिला आरक्षण में कोई हमने कमी नहीं रखी है। हमारे बहुत बड़े बड़े जो पद हैं उनमें अधिकतर पदों पर महिलाएं जो विराजमान हैं। हमारी मुख्य संपादक एडिटर इन चीफ ज्योति मल्होत्रा हैं, हमारी पंजाबी की एडिटर श्रीमती अरविंदर जौहल हैं, हमारी हिंदी की समाचार संपादक जो हैं वो मीनाक्षी वशिष्ठ हैं, अंग्रेजी में हमारी समाचार संपादक रह चुकी नानकी हांच हैं, और हमारे जितने ब्यूरो हैं, शिमला में हमारा ब्यूरो है, चंडीगढ़ में ब्यूरो है, दिल्ली में ब्यूरो है, हर जगह पे हमारे ब्यूरो चीफ जो हैं वो मुझे ये कहते हुए गौरव महसूस होता है कि सभी महिलाएं हमारे इन संस्थानों का जो है वो नेतृत्व कर रही हैं। तो चलिए, कहीं वही विषयांतर वाली बात ना हो जाए, फिर विषय पे लौट आए। परिवारों को लेकर समाज तक और समाज से लेकर विश्व तक को शांति की माला में पिरोने के लिए निश्चय ही मीडिया अहम भूमिका निभा सकता है, विश्व शांति के लिए जनमत तैयार कर सकता है। और इस तरह जागरूक हुआ जनमत दुनिया के नीति नियंताओं से यह सवाल कर सकता है कि आखिर शांति के लिए बनाए गए संगठन अपना फर्ज अदा क्यों नहीं कर पा रहे। ऐसी कौन सी शक्तियां हैं जो इस संस्थान को पंगु बना रही हैं। दुनिया के मठाधीशों से पूछा जाना चाहिए कि विश्व के वैश्विक भाईचारा और विश्व शांति के उद्देश्य से बनाए गए जो संगठन, मसलन संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे जो संगठन हैं, वो आखिर ये संगठन शांति के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं, जबकि अमेरिका, रूस जैसी महाशक्तियां, इसराइल और आतंकी शक्तियां देश की मानवता को रौंदने पर क्यों तुली हुई हैं। दुनिया भर के मीडिया कर्मी यदि अपने देश में शांति के लिए जनमत तैयार करें, अपने अपने देश की सरकारों को सहचार, भाईचारे और शांति की स्थापना के प्रयासों को तेज करने के लिए अपनी कलम का दबाव बनाएं, तो आपकी यही कलम रोशनी की मशाल बन सकती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक सक्रिय मीडिया के मेरे साथियों, उठाओ अपना गांडीव रूपी कलम का अस्त्र, दागो सवाल। अरे विश्व शांति के मसीहा का ढोंग रचने वाले महाशक्तिमानों, आप किस हैसियत से नोबल पुरस्कार पाने की जुगतें बढ़ा रहे हैं, नोबल शांति के पाने के प्रयास कर रहे हैं। आपने अपने एक हाथ में तो मानव वर्धन की मिसाइल पकड़ रखी है और दूसरे हाथ से नोबेल पुरस्कार पाना चाहते हैं। मीडिया के शक्तिमानों, जतलादों ने कभी ना कभी शांति का उजाला उनके झूठ के अंधकार को अवश्य निकलेगा। ऐसे हथियार विक्रेताओं को एक शायर की आवाज सुना दो, मेरे चिराग अलग से हों, तेरे चिराग अलग, मगर उजाला तो फिर भी जुदा नहीं होता। मेरे शांति के दूत भाइयों और बहनों, विज्ञान ने दूरियां तो मिटाई हैं मगर दिलों में खाइयां घर कर रही हैं। मीडिया के मेरे दोस्तों, ये सच्चाई हमें माननी पड़ेगी कि सूचना की गति भले तेज हुई है मगर संवेदनाओं की गहराई कम हो रही है। मानव अस्तित्व के बचाव के लिए, मानवता के कल्याण के लिए हमें भी ब्रह्म कुमारी मिश्रियों की भांति शांति दूत की भूमिका निभानी होगी। विश्वास जन्म लेता है और मानवता अपनी वास्तविकता को पहचानती है। जब व्यक्ति शांत होता है तो परिवार शांत होता है, परिवार से समाज और समाज से विश्व शांति में विस्तार होता है। विश्व, मैं क्षमा चाहूंगा बस 2 मिनट और देंगे, विश्व और समाज के समक्ष दरपेश संघर्ष, असहिष्णुता और मानसिक तनाव जैसी चुनौतियों की महज खबर देना ही मीडिया की ड्यूटी नहीं, बल्कि ऐसी चुनौतियों से स्वयं भी उसे दो चार होने होना हमें पड़ेगा। मीडिया समाज का दर्पण ही नहीं बल्कि उसका मार्गदर्शक भी है। वो एक कहावत है ना कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। कहने का अभिप्राय यह कि मीडिया जो परोसता है यह हमारे सबके लिए है, कि मीडिया जो परोसता है, जो दिखाता है, समाज की सोच वैसी ही बनती है। मीडिया जो बार बार दोहराता है वह समाज की धारणा में बदल जाता है। अगर यह विभाजन करने की क्षमता रखता है तो यह मीडिया समन्वय स्थापित करने में भी अपार शक्ति रखता है। किसी शायर ने ठीक कहा है, लफ्जों से ही बनते हैं रिश्तों के कारवां, मीडिया चाहे तो ये जोड़ दे जहां। तो आज सेंसेशनल पत्रकारिता की नहीं, पीत पत्रकारिता की नहीं, बल्कि पीस पत्रकारिता की, शांति की पत्रकारिता की जरूरत है। एक ऐसी पत्रकारिता जो समाधान खोजे, ऐसी पत्रकारिता जो सकारात्मकता सामने लाए, जो मानवता में आपसी सांझ को उजागर करे। युद्ध की तस्वीरें जरूरी हैं मगर शांति वार्ता की मेज की तस्वीरें भी उतनी ही जरूरी हैं। महात्मा गांधी, बुद्ध, दादी प्रकाशमणि जी जैसे शांति दूतों के संदेश भी मीडिया की सुर्खियां बने। याद रखिए, सरहदें नहीं रोक सकती संवेदनाओं के सैलाब, चाहे कोई किसी भी देश का हो, धर्म जाति का हो। दर्द सबका एक सा होता है, आंसू सबके एक से होते हैं, रक्त सबका एक सा होता है। समापन की ओर जा रहा हूं। ब्रह्म कुमारी दीदियां अक्सर कहती हैं, विचारों से संस्कार बनता है। मीडिया विचारों का सबसे बड़ा माध्यम है। यदि मीडिया ठान ले 24 घंटे में पूरी दुनिया की सोच बदल सकती है। ब्रह्म कुमारी मिशन हमें सिखाता है कि शांति बाहर से नहीं भीतर से शुरू होती है। जब तक हर मन में शांति नहीं होगी विश्व में शांति असंभव है। और मन की शांति आती है आध्यात्मिक मूल्यों से, सकारात्मक चिंतन से और वसुधैव कुटुंबकम से। वैश्विक शांति के लिए मीडिया के अपने मित्रों को संक्षेप में 4 सूत्र मैं देकर अपना ये समाप्त कर रहा हूं भाषण। 1, संवाद को संघर्ष पर प्राथमिकता दें। 2, संवेदनशील मुद्दों को संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत करें। 3, सकारात्मक न्यूज स्टोरीज को प्रमुखता दें। और अंत में 4, आध्यात्मिक मूल्यों, करुणा, सहिष्णुता और मानवता को मंच प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
आपका भी बहुत दिल से शुक्रिया। विशेष अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी कि आप सभी कोई भी सभा से अभी नहीं उठेगा, क्योंकि जो पल हमें बहुत प्यारा लगेगा वो है आदरणीय दीदी सुदेश जी का भोलापन। और बहुत दशकों से जिन्होंने अपने जीवन में आध्यात्म को उतारा है। आपका जन्म 1942 में हुआ और साथ साथ आपने एक उच्च श्रेणी की शिक्षा भी प्राप्त की और आध्यात्मिक मार्ग में आप 1957 से लग गए और वर्तमान समय आप ब्रह्म कुमारीज की संयुक्त मुख्य प्रशासिका हैं एवं ज्ञान सरोवर एकेडमी की डायरेक्टर भी हैं। और इन्होंने विदेशों में बहुत देशों की यात्राएं करके करीब करीब 72 से भी अधिक देशों की यात्रा की, और विशेष रूप से आप जर्मनी और यूरोप के भी निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। तो जीवन में सफल होने के लिए व्यवहार में आप बालक हैं दीदी जी, कार्य में आप युवा हैं दीदी जी, एवं अनुभव में आप वृद्ध हैं। तो इस अनुभव को साझा कर रही हैं आदरणीय सुदेश दीदी जी।
मंच पर विराजमान मेरे आसपास बैठे हुए मेरी भाई और बहने, मैं हर एक के नाम की माला जपूं या हीरों के हार को हृदय से नमस्कार करूं? और मेरे सामने बैठे हुए चैतन्य चमकते सितारे, लाइट हाउस है आप माइट हाउस है आप, विश्व को लाइट देने वाले पत्रकार, संवाद जो भी कर्तव्य आप कर रहे हैं हृदय से कर रहे हैं और आज यहाँ पहुंचे हैं उसका सबूत है कि आपको वास्तव में शांति अति प्रिय है, नहीं तो क्यों आते इस सब्जेक्ट को देख के। बोर्ड पर लिखा हुआ है विश्व शांति, क्वेश्चन उठा विश्व में शांति बराबर किस भाव से लिखा है, क्योंकि सारा विश्व हमारा परिवार है, वन गॉड वन वर्ल्ड वन फैमिली। बेशक आज टुकड़े टुकड़े हो चुका है संसार, पर यही भारत भूमि जहां पर श्री लक्ष्मी नारायण जी का राज्य था, एक धर्म एक राज्य एक भाषा, विश्व का सारा भारत ही विश्व कहलाता था, भारत सोने की चिड़िया था, भारत शांति का दूत है, भारत जगत गुरु था। वो है था नहीं, क्योंकि वो भारत माँ के लाल आप सभी हम सभी हमारे संस्कारों में वास्तव में वो शांति की शक्ति है, क्यों कि हम शांति के सागर की संतान है। आपने जब भी कभी भी बहुत बार ये अनुभव किया होगा कि जब भी कोई गुस्सा करता है ना, शांति करो शांति करो, घर में अशांति हो शांति करो, हर एक चाहता है शांति, क्योंकि अशांति हमारा स्वधर्म नहीं है। और दूसरी बात ये भी है कि जीने में जिंदा है तो शांति चाहिए, परंतु मर गए तो भी कहते हे परमात्मा इनकी आत्मा को शांति का दान देना। इसका मतलब आत्मा को शांति चाहिए, डेड बॉडी तो वहां पड़ी है, कानों को शांति चाहिए, मुंह को शांति चाहिए, हाथ पैर को शांति चाहिए, नहीं आत्मा को शांति चाहिए। तो जैसे शीलू दीदी जी ने आपको अभ्यास कराया, वास्तव में आत्मा को शांति चाहिए। तो मेरे मनीष भाई जी ने हृदय की आवाज में जो बोला, क्या वास्तव में शांति चाहिए प्रैक्टिकल में, और वो तभी हो सकती है जब हम सब मिल करके, जैसे प्रैक्टिकल में आपने नरेश भाई जी का भी विचार सुने, हमारे सुभाषा रखने वाले भाई की भी विचार सुने, सुभाष भाई जी के भी विचार सुने, मैं किन किन के नाम की महिमा करूं। मेरा भाव ये है कि वास्तव में जब तक हमने बीज को हाथ में नहीं पकड़ा है, बीज को नहीं सींचा है, पेड़ से फल नहीं मिल सकता। तो बीज को जल देने की आवश्यकता है, और बीज थैली में पड़ा हुआ फल नहीं देगा। हजार फल आप बीज में एक थैली में भर के रख दो और चाहो ये बड़े वैल्यूबल बीज हैं, परंतु उनको धरती चाहिए, वातावरण चाहिए, जल चाहिए, सूर्य की शक्ति चाहिए। तो आत्मा को शरीर तो जरूर चाहिए, परंतु क्वेश्चन उठता है उसको सींचे किस वातावरण में, उसको बोया किस वातावरण में गया है। तो इसीलिए ज्यादा विस्तार न करके, अभी समय की भी सीमा है, सार में मैं ये कहूंगी, आप सब भारत भूमि की महिमा है। ये फूलों का बगीचा था, तो परमपिता परमात्मा विश्व कल्याणकारी पिता शांति के सागर है, और ब्रह्मा की संतान सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारिया नहीं है, आप भी ब्रह्मा के बच्चे हो, ब्रह्मा की संतान बना। तो ये कोई बीच में दीवार नहीं है, अंतर ये है कि हमने व्यवहार वैसा बनाने का अभ्यास कर रहे हैं, विचार वैसा बनाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और उसी भावना से संसार में यही है कि हम सबको संदेश देवे। पर संदेश तक काफी नहीं है, क्योंकि मैं 100 देशों में गई हूँ, 100 देशों में जाने को मेरा सौभाग्य मिला, परंतु एकदम तो कोई ज्योत जगी, संदेश मिला, पत्र से भी पत्रकार संदेश दे देंगे, बीच दीवा जगा देंगे, पर जब तक उसमें तेल नहीं पड़े या लाइट जला दी, स्विच ऑन नहीं रखा, तो अंधेरा तो फिर हो जाएगा। तो टेम्पररी शांति नहीं चाहिए, शांति आत्मा का संस्कार है, आत्मा का स्वधर्म है। तो इसीलिए मन की शांति कहा जाता है। आत्मा क्या है, उसमें शांति भरनी है, फिर संसार में शांति जाएगी। अब आत्मा, हमने दीपक जगाया, अब दीपक जगते ही क्या चीज निकली उसमें से? लाइट निकली, और चीज क्या प्रकट हो गई ऑटोमेटिकली? फायर। तीसरी चीज क्या प्रकट हो गई? उसका फॉर्म। तो हम चैतन्य ज्योति में तीनों चीजें हैं। जैसे दीवा बुझा तो लाइट भी गई, आग भी खत्म हुई और उसका रूप भी खत्म हुआ। ऐसे आत्मा शरीर से निकली तो उसमें से मन भी गया, बुद्धि भी गई और उसका चरित्र भी गया, सात संस्कार चले गए। तो संसार में रहते हुए, जिंदा होते हुए, शरीर में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, संसार में रहते हुए, हमको शांति का अभ्यास, अनुभव और वातावरण बनाना है। फूल खिलेगा, खुशबू कहता नहीं है कि मेरे में खुशबू है, गुलाब का फूल कहता नहीं है, चमेली का फूल कहता नहीं है कि मेरे में खुशबू है, पर हवा उसकी खुशबू ले जाती है, हवा फैला देती है खुशबू। तो जब हम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होंगे, तो मेरे मीठे भाइयों, प्यारी बहनों, ओम शांति के साथ साथ मैं हमेशा कहती हूँ ओम प्रेम, ओम आनंद। जब तक आपने शांति का आनंद नहीं लिया और परमपिता परमात्मा के साथ प्रेम भरा संबंध नहीं जोड़ा, तो शांति शक्ति मिले कहाँ से? और उसका आधार है कल्याण की भावना। चैरिटी बिगिन्स एट होम। दूसरों को शांति देने की भावना अच्छी है, पर शांति हो तो शांति देंगे ना। तो इसीलिए मैं आपको, आप सबको, हमको तो गुलदस्ता मिला है फूलों का, मैं तो आपको, ये तो फिर भी मुरझा जाएगा, पर मैं आपको पंच पंखड़ी का फ्लावर देना चाहती हूँ, 5 पेटल फ्लावर देना चाहती हूँ। और वो 5 पंच पंखड़ी का फ्लावर शांति का फ्लावर है अथवा पीस फ्लावर है। PEACE, ये 5 पंखड़ी का फ्लावर आप लेके जाओ, अपनी कॉन्शियस में प्लांट करना, और उसके लिए रोज जल देना पड़े उसमें, मन के संकल्प को शुद्ध रखने के लिए। तो पी पेटल कहती है, पी फॉर पॉजिटिव, पॉजिटिव सकारात्मक विचार रखेंगे तो शांति साकार रूप में प्रकट हो जाएगी, सिर्फ प्रार्थना में नहीं। ओम शांति शांति, अंतरिक्ष गम शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, रोष दया शांति, या हर प्रकार से वास्तव में प्रैक्टिकल में शांति है जब हमारे संस्कार में शांति भरे। तो इसलिए पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, उसमें प्योरिटी चाहिए, उसमें सत्यता चाहिए। तो पी फॉर पॉजिटिव प्योर, उसमें शक्ति चाहिए दृढ़ता की, अपने अंदर दृढ़ संकल्प से और निश्चय की कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। स्वधर्म की शक्ति यही है फिर एक्सरसाइज। खाली बोलने की बात नहीं, मुंह से बोलने की बात नहीं है, बैठ के शांति करने की बात नहीं है, चलते फिरते उठते बैठते एक्सरसाइज प्रैक्टिकल का अभ्यास मेक्स प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। इसकी प्रैक्टिस करनी है बार बार। मैं शुद्ध आत्मा शांत स्वरूप हूं, हर श्वास में श्वास तो रहने, जब तक जिंदा है तो श्वास तो है ना, वे तो मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है, संकल्प में मेरी पर्सनल क्रिएशन है। तो मैं शुद्ध आत्मा शांत स्वरूप हूं, ये एक्सरसाइज अथवा अभ्यास, और ये एजुकेशन है अपने लिए, दर्पण है कि मैं कितने बारी दिन में गुस्सा करती हूं या अपसेट हो जाता हूं या कितने बारी अपने आपा खो देता हूं, कंट्रोल खत्म हो जाता है। तो अपने पर ध्यान, तो एजुकेशन, अपने आप को एजुकेट करने की बात है, एक्सरसाइज करने की बात है। और पीस कोई जंगल में नहीं मिलती, पीस कोई पहाड़ों पर नहीं मिलती, पीस ऊपर आकाश में नहीं मिलती है, पीस यहां है, इस धरती पर चाहिए, क्योंकि हम यहां के रहने वाले हैं, इसी भूमि पर चाहिए। भारत भूमि स्वर्ग बनता है, सुख धाम पर बनता है। तो एक्शन में शांति चाहिए, ए फॉर एक्शन। व्यवहार में शांति चाहिए, इंटरेक्शन में शांति चाहिए। तो कर्म करते हुए, चाहे खाना खा रहे हैं, चाहे पका रहे हैं, चाहे ड्राइव कर रहे हैं, चाहे बच्चों के साथ बैठे हैं, जो भी घर में काम कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, बार बार एक्शन में शांति, एक्शन में शांति। उससे रिजल्ट क्या होगा? शांत मन, सी फॉर कूल, कूल माइंड, डीप शांति, स्वीट शांति, परफेक्ट शांति, सुप्रीम शांति। और जितना जितना डीप साइलेंस होगा, साइलेंस किल्स वायलेंस। शांति क्यों चाहिए? क्योंकि वायलेंस को खत्म करना है। तो जितना साइलेंस को बढ़ाते जाएंगे, लाइट को बढ़ाते जाएंगे, अंधेरा खत्म हो जाएगा। सूर्य चढ़ेगा, लड़ाई नहीं करता सूर्य किसी को अंधकार को मिटाने के लिए। मेरे घर की लाइट फाइट नहीं करती अंधकार को खत्म करने के लिए। लाइट जलाई, अंधकार खत्म हो गया। तो मुझे अपनी वो लाइट जलाने के लिए अपने मन को शांत करके रखने का है। तो मेरा नेचुरली कूल माइंड, सी फॉर क्लियर इंटेलेक्ट। और कोई चीज मेरी से रॉन्ग हो गई है तो मेरे को करेज चाहिए रियलाइजेशन से करेक्ट करने का, और करेज चाहिए दूसरों को एक्सेप्ट करने का, एप्रिशिएट करने का। तो मेरे अंदर वो संस्कार बन जाएगा, हमारा विचार व्यवहार सुधर जाएगा। और फाइनल पेटल है ई, इजीयर, एवरीथिंग, शांति, प्रेम, श्रद्धा, सम्मान, पवित्रता, दिव्यता, सत्यता, मीन्स एनलाइटनमेंट। तो आप ये पांच पर्पल का फ्लावर लेके जाओ, और मुझे कई विश्वास है कि आप अभ्यास करेंगे तो आपकी ज्योति सदा जगी रहेगी, और अनेकों की ज्योत आप जगाएंगे, क्योंकि आप लाइट हाउस हो। पत्रकार माइट हाउस, लाइट हाउस होते हैं, मीडिया लाइट है देने वाले। तो इसीलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, पधारे हैं, और एंजॉय कीजिए एक्सपीरियंस। ओम शांति।
बहुत बहुत शुक्रिया दीदी जी आपका, और मैंने आपके ही वक्तव्य में सुना तो मैं क्षमा चाहूंगी, आपने 70 देशों में नहीं 100 देशों से भी अधिक देशों में यात्राएं करके आध्यात्म का प्रचार किया है, और आपकी यादों से जिंदगी खूबसूरत रहेगी, निगाहों में हर पल दीदी जी आपकी सूरत रहेगी, कोई चीज न ले सकेगी आपकी जगह, हम लोगों को आपकी हमेशा जरूरत रहेगी, हमेशा जरूरत रहेगी। अब मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ बहन तनिया को, और बहन तनिया कनक न्यूज की संपादक हैं, और साथ साथ आप ईस्टर्न मीडिया लिमिटेड की कार्यकारी निदेशक भी हैं, और पत्रकारिता में भी मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से ओडिशा संस्कृति को आपने बढ़ावा दिया है, और साथ साथ उन्होंने चॉकलेट प्रोडक्शन की स्थापना की जिसने अहे नीला शैला और ओडिया दास जैसे नाटकों का निर्माण किया है। तो मैं आमंत्रित करती हूँ बहन तनिया पटनायक।
ओम शांति। Respected chief guest on the dais, Subhash Barala ji, Rajyogini Sudesh Didi, all the respected guests, all the members of the Brahma Kumari family, all the delegates, members of the media, I am very, very happy to be here today. I thank you all for the opportunity. It is really been a blessing to have spent the last 15 hours, 16 hours here on campus. I had heard a lot about the Brahma Kumaris, but what I have truly witnessed in the last few hours has been very unique. The people especially, the community that has been built has been truly impressive, and the kind of work that is being done. And the best thing is the kindness, it's not performative. It is a very lived thing. Itne pyar se khila rahe hain, itne pyar se swagat kiya. And my special shout out to Nathmal bhai, who has been with me throughout, from invitation to explaining me so patiently about the entire system, the teachings of Brahma Baba, the whole journey from Sindh to Karachi to Mount Abu. He's been such a gracious host, and my experience here has been truly, truly illuminating and enjoyable. I thank you all for giving me the opportunity. I will be speaking in English because I am not used to Hindi, so please excuse me. I have been invited here as a member of the media fraternity, but I stand here first and foremost as an Odia. My identity, my first identity is I come from Odisha. I come from the land of Jagannath. So today when we are gathered here discussing about media's role in attaining global peace, it is natural for all of us to feel a little overwhelmed, to feel a little hopeless, to feel a little helpless, because we in media, we are witnessing the conflict, the hate, the divide, the noise, the chaos, everything on ground. So it's natural for us to be skeptical, to question even the possibility of peace. But coming from the land of Jagannath, I would like to view this from the lens of Jagannath called culture and consciousness. You know, Jagannath's life teachings have answers to the most complicated questions in life. And I believe that probably there would be some teachings for us in media as well. Every year in Puri, I'm sure you've all heard of the Rath Yatra, the largest chariots of the world, they move through the streets, and they are not pulled by priests or machines. They are pulled by ordinary hands. The hands of a widow, the hands of a farmer, the hands of a student, the hands of a skeptic, And there no one asks you what is your caste, what is your income. Every hand on that rope, every hand pulling that rope is equal. Jagannath in our tradition is not a distant god. He is said to be a living god. He laughs and cries with his devotees. He eats with the untouchable. He can go to any length for his devotees. And even in some stories, he even washes the clothes of his devotees. So in Jagannath culture, peace is just not an abstract slogan. It is a basic grammar of life. So it is the idea that we are all one family and that dignity must be given to the poorest, the smallest, and the most forgotten. And it teaches us that true peace begins when the mighty do not consider the weak as a burden, when the mighty consider them as a brother or sister. And this is the first lesson I feel media must learn if it wants to be a force for world peace. Like Jagannath's chariot, the media can also be the common chariot, not only of the elite or the powerful or the rich, not of any particular community or any particular party, but of shared humanity. If you have seen Jagannath, Jagannath's eyes are large. They're wide open all the time. They don't look down on anyone. Media too must learn to keep its eyes wide open to the suffering of all, not only to the stories that get us TRPs and advertisements or viewership. We live in a digital world now. Earlier values were passed on from generation to generation, within the family, within our intimate circles, during meals or via stories from grandparents or parents, lessons of sharing, love, compassion, empathy. We learned it living in joint families from real quality time spent together. But today families are becoming nuclear. Grandparents live in distant cities or even distant countries, and parents are working, they have limited time. So children confide in gadgets now. They don't confide in the elders or their parents. The screen has become the constant companion. So sometimes I feel now media has quietly become the new parent, the new grandparent. We are the ones who tell the stories. We are the ones they look to when they want to know more about the world. We are the ones who are shaping the narrative. We are telling them what is normal, what is cool, what is dangerous, what is worth fighting for, what is worth letting go. The media has become a very personal one-to-one medium. So here we must understand that we carry a huge spiritual responsibility, not in the real religious sense, but in the sense that, you know, our words, our stories, our content are shaping minds, and those minds are shaping the world. So the bigger question here is for all of us, I will just leave it as a question, is that are we really ready for this big responsibility? And this brings me to another topic that is a little distressing for me. Manish ji has touched slightly on this. I agree with each and every word that he said. And I say this with little discomfort, a little bit of shame, because I also belong to this fraternity and profession. But a lot of our esteemed speakers spoke about the way we are reporting on war. And I'm sure all of you must be aware that the TRP, the television rating points, the TRP reporting has been suspended for an unspecified period of time, temporarily, because some media houses, or I would say most media houses, were using, exploiting war, death, suffering, tragedy for ratings. So when people are dying and media channels turn tragedy into breaking news, so when viewership, likes, engagement, shares, eyeballs, they become more important than the truth and its consequences, then I think this is an absolute betrayal of the medium that we're working for. And there is also something else that is unspoken. Again, Manish ji has touched a little bit on that. The state of mind behind each story. Every story is filed by a human being, end of the day. And every human being has an inner state. So if a journalist carries anger, fear, bias, that emotion affects the story in some way or the other. That is certain. But if a reporter is calm, compassionate, and curious, the story can become a weapon. The story can become a bridge rather than a weapon. So when a journalist sits down to cover a story, are they anxious? Are they in fear? Are they upset? Are they angry? Are they anxious about their careers? You know, there could be so many things. Have they had an argument at home? And this is not a criticism, because, you know, this is simply what it is to be human, and we are all human, right? I will take this opportunity to acknowledge the wisdom, philosophy, and teachings of the Brahma Kumaris, because they have long taught this very thing, that the quality of what we create in the world is inseparable from the quality of what we practice inside of us, what we feel inside of us. And this is not a retreat away from our professional life. I feel this is one of the very, very professional things needed for media in today's world, where it's an essential tool for editorial, it's an essential tool for every media person, what we are doing right now, and what will happen in the next 2-3 days, the practice of observing our own mind. So a journalist who can notice their own fear, their bias, their fatigue before, you know, writing a sentence or before recording something on air, you know, that journalist will be a more accurate journalist and a more powerful force of peace. One thing is certain, the medium has changed. Now our approach also needs to change. I would like to just leave you with a thought that what if we began to treat journalism and content creation as a form of spiritual practice? Not in a religious sense, but in the sense that every piece of content that we release into the world, be it a story, be it a print item, be it a podcast, be it anything, we have to consider it as an act with a consequence, like karma. So if we pause before writing, if we pause a little before saying, if we pause a little bit before typing, then I think we will be more aware of what we are writing, and we can ask simple questions like, is this getting people together, or is this dividing people? So there is a phone in every hand, and the people holding it are looking for what human beings have always looked for: meaningful connection, the sense that they are not alone in the world. And technology is not the enemy. The question is, what is the soul behind the screen? If the soul is greed, TRPs, polarization, then technology will be a weapon. But if the soul is love, compassion, truth, care, then the same technology can carry the spirit of peace. So more stories of reconciliation, of peacemakers, of love, of healing, of shared values in culture. In our temples, we light a lamp. Rajyogini Didi has also spoken about that lamp. The flame might be small, but it has the power to dispel darkness. Media can too be that small lamp, promoting unity, not division. I started with Jagannath, I will end with Jagannath. Jagannath's greatest teaching is this: peace is not something that you declare, that, you know, we have peace, or we should go for peace. It is something you practice every day, in every small act, in how you treat the person in front of you. The media that practices peace looks like this. They choose truth over sensation, choosing the human face over body counts, choosing to build rather than to break. It looks like a journalist who has cultivated enough stillness inside to report fear without spreading it. It looks like a newsroom that asks before every broadcast. So Rath Yatra does not reach its destination in a single pull. It moves inch by inch, hand by hand, together. The world can be built the same way, world peace, story by story, one act of responsible journalism at a time. I thank the Brahma Kumaris for organizing this for us, the media fraternity, so, so relevant and so, so meaningful in today's world. And if we go back from there, and even if we can probably change the way we report, even by 1%, all of us in this room, then the collective impact will be very, very huge, and the world will definitely be a better place, a more peaceful place. Thank you all so much for this opportunity. Om Shanti.
Dhanyavad aapka bhi tahe dil se. Ab antim padav ki aur main amantrit karne ja rahi hun भ्राता करुणा भाई जी को, और आप मीडिया विंग के अध्यक्ष हैं और अवेकनिंग टीवी के चैनल प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। वे पीस म्यूजिक टीवी और रेडियो मधुबन 90.4 एफएम में सक्रिय रूप से शामिल हैं। जैसा कि नाम है, आप करुणा ही हैं और आपके जीवन में ये करुणा दिखाई भी देती है, क्योंकि शब्द शब्द में ब्रह्म है, शब्द शब्द में सार, शब्द सदा ऐसे कहो जिनसे उपजे प्यार। सेक्रेटरी जनरल ब्रह्मा कुमारीज मीडिया विंग।
सत्यम शिवम सुंदरम, ओम नमः शिवाय। मुझे वो दिन याद आता है जब हम सभी व्यवसायियों का सेवा करते रहे, तो मैं भी मीडिया में 26 साल यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया में देश विदेश की सेवा करता रहा। इसीलिए मैं कहूँगा कि भी आप हमारे परिवार के हैं, बंधु हैं, जो हम आप सबको एक दो को जानते हैं। तो जब मैंने रिक्वेस्ट किया दादी प्रकाशमणि जी से, तो उन्होंने कहा कि जरूर इन्हों को बुलाइए। परंतु उस समय पर हमको ऐसा लग रहा था कि भाई हमारे प्रोफेशन जो है फोर्थ पिलर जैसा है, तो आज तक अब तक 24 घंटा बिजी रहने वाले यहां तक आ सकेंगे या नहीं। परंतु मुझे अत्यंत हर्ष है तो आप सभी यहां पधारे हैं। अपनी व्यवसाय आप जानते हैं, यहां भी आप उसके बारे में सोचते होंगे, परंतु ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय लगभग 90 साल से एक मैसेज दे रहे हैं कि जैसे एक विश्व है, वैसे ये जो भी इस विश्व में रह रहे हैं वो एक परिवार है, वसुदेव कुटुंबकम कहते हैं। तो अन्य व्यवसायियों की सेवा तो हम करते हैं, तो क्यों नहीं हमारे पत्रकार बंधु, तो आप सभी आए हैं तो ईश्वर के घर में, ये कोई व्यक्ति का नहीं है। तो यहाँ कोई गुरु है तो एक निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। तो इसलिए मैं आप सब से यही निवेदन करूंगा, जो दो तीन दिन आप ऐसे समझे जो आप अपने घर पे है, तो अपने व्यवसाय से थोड़ा सा अपना शरीर को मन को दूर रख के आप जितनी शांति का अनुभव कर सकते हैं। तो जैसे सुबह सुबह हम लोग सब 4 बजे एकत्रित होते हैं, तो वो समय बहुत अमृत वेला कहते हैं। तो आप यहाँ आए हैं तो उसका लाभ जरूर लेना है। बाकी जो आपका शारीरिक, जैसे आपके स्थान जो है उसका शांति का अनुभव आप करेंगे ही, और आपको अन्य रिक्वायरमेंट्स जैसे कभी किसी को दवाइयों का या किसी को पर्टिकुलर अपना भोजन के बारे में भी हो तो आप बता सकते हैं। आप अपने घर में हैं तो जरूर आप इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का शांति का अनुभव इन 3 दिनों में करेंगे। ऐसी आशा करते हुए मैं आपको हार्दिक स्वागत करता हूँ, स्वागत करता हूँ, स्वागत करता हूँ। ओम शांति।
वाकई में भ्राता जी, आपने बहुत कम शब्दों में ही करुणा बरसा दी, क्योंकि अच्छे स्पीकर वही होते हैं जो थोड़ा समय प्रबंधन का भी ध्यान रख के उसको और शॉर्ट कर देते हैं। तो यही करुणा मुझे आपसे अभी महसूस हुई, जिसमें प्यार भी झलका और आत्मसम्मान भी झलका। अभी मैं भ्राता डॉक्टर राजेश राजूरे बुल्डाना, आवृत्ति संपादक दैनिक देशोन्नति खामगांव, एवं डॉक्टर सोमनाथ वडनेरे, मीडिया प्रभाग महाराष्ट्र, राज्य समन्वयक जलगांव, संकलित सीधी बात शायरी के साथ का विमोचन अतिथियों के द्वारा करने जा रहे हैं और बहुत सुंदर पुस्तक का विमोचन होने जा रहा है और सभी मंचासीन हैं और एक बहुत सुंदर मुस्कुराता हुआ ग्रुप फोटो लिया जा रहा है, क्योंकि एक पुस्तक लिखना भी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि लेखनी में भी बहुत ताकत होती है और ये ताकत समाज को एक दिशा दिखाती है। तो ये बहुत सुंदर पुस्तक विमोचन, जिसमें संस्कृति भी है, सीधी बात भी है, न दिखावे की बात करता हूँ, न झूठा एहसास देता हूँ, जो महसूस करता हूँ वही कहता हूँ, इसीलिए सीधी बात करता हूँ, इसीलिए सीधी बात करता हूँ। पुस्तक का विमोचन हो रहा है और इस बुक को आप भी जरूर जरूर पढ़िएगा, भ्राता डॉक्टर राजेश राजोरे द्वारा लिखित। अब केवल 2 मिनट अब ये विशेष हमारे अतिथियों को, ब्रह्मा कुमारी इस परिवार के हमारी विशेष दीदियों के द्वारा गिफ्ट, गॉडली गिफ्ट एवं प्रसाद दिया जा रहा है। देखिए, आप 3 घंटे की फिल्म देखते हैं, समय निकल जाता है, 3 घंटे हुए हैं, तो बस उसके पश्चात आप भोजन के लिए जाएंगे। और विशेष हमारी सुदेश दीदी जी स्वागत कर रही है दिल की गहराइयों से, ईश्वरीय प्रसाद देते हुए और साथ साथ गॉडली गिफ्ट देते हुए।